कर रहे थे किस प्रकार श्रील रूप गोस्वामी ने उपदेशामृत क्यों लिखा, इसका हमने चर्चा किया। आमुख में प्रभुपाद जी बड़े सुंदर तरीके से समझाए और फिर किस प्रकार श्री चैतन्य महाप्रभु कृष्ण का विज्ञान देने आए और कृष्ण के विज्ञान में सर्वश्रेष्ठ है गोपियों का प्रेम भगवान श्री कृष्ण के प्रति, और उस गोपियों में से श्रीमती राधारानी सर्वश्रेष्ठ है, और श्री चैतन्य महाप्रभु श्रीमती राधारानी के भाव में आए न केवल आस्वादन करने के लिए बल्कि वो प्रेम बांटने के लिए। अनर्पित चरिंचिरात करुणा अवतीर्ण कलो। और अगर श्री चैतन्य महाप्रभु का श्री कृष्ण को समझना है तो श्री चैतन्य महाप्रभु के द्वारा ही सबसे अनुकूल, सबसे आसान, सबसे सरल तरीका है। और श्री चैतन्य महाप्रभु को के ज्ञान को समझना है तो षट गोस्वामियों के द्वारा हो सकती है। एछे गोसाई को चरण वंदन जहा होते विघ्न नाश अभिष्ट पूर्ण, उनके चरणों कृपा से हम उनके अनुगमन करते हुए चरण चिन्हों पर चलते हुए हम श्री चैतन्य महाप्रभु के संदेश को जान सकते हैं, और उनमें से श्री रूप गोस्वामी उनके नायक हैं, गोस्वामियों के नमो महावदान न्याय कृष्ण प्रेम प्रदायक है, श्री रूप गोस्वामी ने बताया। और श्री चैतन्य मनोभीष्टम स्थापितम येन भूतले, कृष्णदास कविराज गोस्वामी कहते हैं कि श्री चैतन्य महाप्रभु के मन की जो इच्छा थी उन्होंने समझा और स्थापित किया, और नवदीक्षित भक्तों के लिए मार्गदर्शन करने के लिए इंद्रियों को संयम करके गोस्वामी बनकर फिर शुद्ध भक्त बनने के लिए, हम वैष्णव तो बन गए हैं पर शुद्ध भक्ति क्या है वो जानने के लिए, तीन गुणों से परे रजो और तमोगुण से परे जाकर सत्वगुण में आना और वहां से भक्ति शुरुआत करने के लिए, शुद्ध भक्ति शुरुआत करने के लिए इत्यादि कारण से श्री रूप गोस्वामी ने ये उपदेशामृत दिया है। और कल हमने चर्चा की पहले श्लोक के ऊपर शुरुआत में कुछ हद तक, पहला श्लोक वाचो वेगम मनस क्रोध वेगम जिह्वा वेगम उदरोपस्थ वेगम एतां वेगान्यो विषहेत धीरः सर्वामपि मां पृथिवीं सशिष्या। वह गंभीर व्यक्ति जो वाणी के वेग को, मन की मांगों को, क्रोध के क्रियाओं को तथा जीव उदर एवं जननेन्द्रियों के वेगों को सहन कर सकता है वह सारे संसार में शिष्य बनाने के लिए योग्य है। और इसके शुरुआत में पहले ढाई पन्ने तक तकरीबन श्रील प्रभुपाद जी ने ये छह वेगों को समझाने से पहले दो महत्वपूर्ण बातों को समझाया है, और वो है हरे कृष्ण। तो सब लोग अपना मोबाइल या वाइब्रेटरी मोड पे रखे या ऑफ करके रखे। तो दो महत्वपूर्ण तत्व समझाए, और वो है पश्चाताप और तपस्या। जब किसी एक व्यक्ति को जेल में डाला जाता है, सरकार जेल में डालती है उसे, तो जेल में डालने का उद्देश्य क्या है? कि वो व्यक्ति सुधर जाए, समझ जाए कि मेरी कुछ गलती थी और वहां से सुधर जाए वो। और अगर सुधरा है तो इसका सबूत क्या है, कैसे पता चले? ये मेरा प्रश्न है आपके लिए कि मुख्य रूप से सरकार किसी व्यक्ति को जेल में डालती है ताकि वो सुधर जाए। अब जेल में जाने के बाद वो सुधरा है या नहीं कैसे पता चले? फिर से अपराध नहीं करेगा वो, पर फिर से अपराध बाहर आएगा तब ना पता चलेगा, पर अंदर कैसा पता चले? किस प्रकार वर्तन अच्छा रहेगा, किस प्रकार कैसे पता चले? जेल का कम से कम नियम ना तोड़े हो, सरकार का नियम तोड़ा इसीलिए अंदर गया, और कम से कम वहां का तो नियम पालन करे वो। अगर वहां जो बताया गया है जेल का वो नियम को पालन करेगा इसका मतलब अभी सुधर रहा है, इसका मतलब थोड़ा सुधर गया है, उसको समझ में आया है कि मैं गलती किया हूं। पर अगर वो सोचेगा कि नहीं मैं यहां से भागना चाहता हूं और भाग के निकला तो उसे ऐसा अंदर जा और ज्यादा कड़क सजा दी जाती है। तानहम दुषत क्रूरान संसारेषु नराधमान क्षिपामि अजस्रम अशुभाम आसुरिम योनि जन्म योनिषु। ये फिर भी नहीं सुधरता है, फिर यहां के भी नियम को, हर एक बद्ध जीव इस भौतिक जेल संसार रूपी जेल में आया हुआ है, सुधरने के लिए भेजा हुआ है, और सुधरने के बदले फिर से द्वेष करता है, फिर से यहां के नियम को तोड़ता है, शास्त्र के नियमों को तोड़ता है। इसका मतलब भगवान कहते हैं ऐसे दुष्यत क्रूरान उसको मैं और नीच नीच योनि में जालता हूं, पेड़ पौधा बन के कीड़ कृमि कीटाणु बन के रह जाता है, ताकि उसकी बुद्धि भी नहीं है कुछ करने के लिए नियम तोड़ने के लिए। पर सुधरने का मतलब है कि वो नियम के पालन, नियम का पालन करने रहता है। हृदय में उसे पश्चाताप हुआ है कि मैंने जो भगवत धाम में किया, इच्छा द्वेष समुत्थेन, भगवान बनने की इच्छा की, वो गलती थी और इसीलिए मैं इस भौतिक संसार में आया हूं। अब मुझे गोपी भरतुर पद कमल और दास दासानुदास, अभी मुझे दासत्व करना है, तो सबसे पहले पश्चाताप। और सही में पश्चाताप क्या है कि यहां के नियमों का पालन करो, यह शास्त्र विधि मुत्सृज्य वर्तते कामकारतः न सिद्धिम अवाप्नोति न सुखम न परामगति। जो शास्त्र के विधियों को यहां तोड़कर वर्तते कामकारतः अपनी इच्छा स्वेच्छा से काम करने लगता है, न सिद्धिम अवाप्नोति, जिस कार्य में लगा हो उसकी सिद्धि प्राप्त नहीं होगी, न सुखम न परामगति। तस्मात् का शास्त्रम प्रमाणं ते कार्य अकार्य व्यवस्थितौ, शास्त्र के प्रमाण से कार्य करना शुरू करना चाहिए। पर शास्त्रों में कर्मकांड, ज्ञानकांड और उपासना कांड, भक्ति योग बताई गई, तो इसकी शुरुआत यहां है। नरक से जाना है, कल हमने चर्चा की, त्रिविधम नरकस्येदं द्वारम, तीन द्वार है नरक के, काम क्रोध तथा लोभ, और ये उत्पन्न हुई है काम येष क्रोध येष रजोगुण समुद्भव, रजो और तमोगुण से। जब रजो और तमोगुण में आ जाता है तो खींचा जाता है, इच्छा नहीं है, अनिच्छन्नपि वार्ष्णेय बलादिव नियोजिता, खींचा जाता है वेग। और ये काम और ये रजोगुण और तमोगुण कहां छिपी हुई है, इंद्रियाणि पराण्याहुर इंद्रियेभ्यः परम मनः मनसस्तु पराबुद्धि, सब जगह है। इंद्रियाणि मनो बुद्धिर अस्य अधिष्ठानम उच्यते, ये रजोगुण और तमोगुण, जैसे कोई सेना आक्रमण करती है किसी दूसरे जगह पर, दूसरे किला पर, तो वहां के स्ट्रेटेजिक पॉइंट मुख्य, जैसा अभी अफ्रीका में जब कू होता है सरकार को ले लेते, सबसे पहले रेडियो स्टेशन कैप्चर कर लेते, बोलते हमने पूरा कैप्चर कर लिया है, उसको मार दिया है, इसको रख दिया है, और आप लोग सब अभी ये रूल है, हमारा नियम चलेगा यहां। तो इस तरह से ये रजोगुण और तमोगुण आक्रमण कहां करती है और कहां सबसे पहले कैप्चर करती है, इंद्रियाणि मनो बुद्धि ही अस्य अधिष्ठानम उच्यते, इंद्रियों को मन को सबसे पहले उसको अपना गुलाम बना देती है और वो जो बोलती है उसे करना पड़ता है, हमको रजोगुण जो कहते हैं हमको करना पड़ता है। इसीलिए कहते हैं कि जो रजो काम क्रोध उद्भवम वेगम, जो उसको नियंत्रण कर सकता है, सयुक्त सुखी न रह, काम क्रोध से वेग आते हैं, तो ये वेग बताई गई है, छह वेग बताए गए हैं। वाचो वेगम, वाचो वेगम मतलब बोलने का एक इच्छा, वेग मतलब एक अंदर से कोई धक्का मार रहा हो, कोई पीछे से धक्का मार तो कैसा हम लोग निस्सहाय भाव से चले जाते, ऐसा अंदर से एक पुश, ऐसा बोलना ही है मुझे, बोलना ही है। वाचो वेगम, मनस वेगम, क्रोध वेगम, जिह्वा वेगम, उदर वेगम, उपस्थ वेगम, छह वेग बताए गए, बोलने का वाचो वेगम, मन का वेग, क्रोध का वेग, जिह्वा का वेग, उदर पेट का वेग, और उपस्थ वेग यानी जननेन्द्रियों का वेग। एतान वेगान्यो विषहेत, विषहेत मतलब जो नियंत्रण करता है, शक्नोति हैव यः सोढुं प्राक् शरीर विमोक्षणात् काम क्रोधोद्भवं वेगम स युक्तः स सुखी नरः। अगर सुखी होना है हमको जीवन में और भगवान की भक्ति में लगना है तो इन वेगों को नियंत्रण करना पड़ेगा, इन वेगों को नियंत्रण करना बहुत जरूरी है। तो ये छह प्रकार के वेग बताए गए हैं और भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर कहते हैं कि ये छह वेगों को तीन वेगों में बांटा जा सकता है मुख्य रूप से, कर्मणा मनसा वाचा। वाचा, वाणी की वेग जो है वाच्यो वेगम, बोलने की एक, दूसरा मनसा, मन से दो प्रकार के वेग होते हैं, एक आसक्ति होना किसी चीज से और वो आसक्त चीज को प्राप्त नहीं करने से क्रोध आ जाता है, अविरोध प्रीति और विरोध युक्त क्रोध। अविरोध प्रीति मतलब किसी चीजों से हमें पता नहीं क्यों स्वाभाविक रूप से आसक्ति हो जाती है, हमारी करने की इच्छा होती है और आसक्त हो जाते हैं हम, उसको छोड़ना बड़ा मुश्किल हो जाता है, भले मालूम है हमारे लिए ठीक नहीं है पर फिर भी वो छोड़ना मुश्किल हो जाता है, आसक्त हो जाते हैं हम उसको। और कुछ चीजें प्राप्त नहीं हुई, जो हम आसक्ति है वो मुझे प्राप्त नहीं हुई तो क्रोध, विरोध युक्त क्रोध। तो क्रोध और जो आसक्ति है, मनोवेगम एंड क्रोध वेगम, ये दो वेग जो हैं वो मन से ही आ रहे हैं, और जिह्वा उदर उपस्थ, जिह्वा का वेग, पेट का, उदर का वेग और उपस्थ जननेन्द्रियों का वेग, ये तीनों एक लाइन में है, स्ट्रेट लाइन, एक का कंट्रोल गया तो दोनों का कंट्रोल चला जाएगा। जिह्वा का वेग नियंत्रण नहीं करे तो कुछ ज्यादा खा लेंगे तो पेट बढ़ जाएगा, पेट भर जाएगा और पेट का दबाव से जननेन्द्रिय के ऊपर जो नियंत्रण है वो चला जाता है। तो इस तरह से ये तीनों जो वेग हैं, जिह्वा उदर उपस्थ, ये शरीर का वेग है। तो भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर कहते हैं कि ये छह वेगों को तीन में बांटा जा सकता है, वाचा मनसा कर्मण, शरीर का वेग, मन का वेग और बोलने का वेग। और जिस व्यक्ति ने इन तीनों को नियंत्रण किया है, वेगों को, उसे कहते हैं गोस्वामी। वैष्णव सन्यासियों को त्रिदंडी गोस्वामी बताते हैं, मायावादी सन्यासी लोग एक डंडा रखते हैं पर वैष्णव सन्यासी त्रिदंडी, तीन डंडा रखते हैं, वो तीन डंडे को एक कपड़े में बांध कर रखते हैं इसलिए एक दिखता है वो, पर एक्चुअली उसमें तीन डंडा है, त्रिदंडी सन्यासी। और ये तीन डंडा क्या है, कर्मणा मनसा वाचा, शरीर को, मन को और वाणी को, जिसने गोस्वामी, इंद्रियों को मतलब शरीर को उसने अपने नियंत्रण में किया है। तो जिस व्यक्ति ने तीनों को नियंत्रण में किया वो गोस्वामी है, भले दंडा हाथ में हो या ना हो, भले सन्यासी हो या गृहस्थ हो, पर जो व्यक्ति ने इन तीनों वेगों को, शरीर के वेग, मन का वेग और वाणी का वेग, इसको जिसने नियंत्रण में किया है उसको कहते हैं गोस्वामी। और ऐसा गोस्वामी कृष्णदास बन सकता है, गोदास और कृष्णदास दोनों का दासों तो एक साथ नहीं हो सकता। तो अब वाचो वेगम, कैसा ये वाणी का वेग क्या है और कैसे इसको नियंत्रण करना है ये बताया गया है। और कहते हैं भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर, जब आत्मा देहात्म बुद्धि में आसक्त हो जाता है कि मैं ये शरीर हूं ऐसा समझ बैठता है, तुरंत ये छह वेग उत्पन्न होते हैं। जब तक हम अपने आप को शरीर समझते हैं तब तक ये छह वेग रहेंगे, और जिस हद तक हम अपने आप को शरीर मानते हैं, देहात्म बुद्धि ज्यादा है तो ये वेग उतना ही शक्तिशाली होता है। और जिस हद तक आदमी अपने आप को शरीर नहीं मानता, मैं शरीर नहीं हूं आत्मा हूं, सिर्फ बुद्धि से जानता नहीं बल्कि उसे साक्षात्कार किया है, उस समय धीरे धीरे ये तीन वेग जो हैं, ये तीन प्रकार के वेग जो हैं, छह प्रकार के वेग जो तीन में बांट जाते हैं वो कम हो जाते हैं। ब्रह्मभूत प्रसन्न आत्मा न शोचति न कांक्षति, क्योंकि वो समझ जाता है कि मैं शरीर नहीं हूं, तो रजो और तमोगुण से ऊपर चला जाता है। न शोचति, शोक करना मतलब तमोगुण, और कांक्षति, आकांक्षा, महत्वाकांक्षा मतलब रजोगुण। प्रसन्न आत्मा जो सत्वगुण में आ जाता है, कम से कम प्रसन्न आत्मा हमेशा प्रसन्न रहता है, जिस स्थिति में भी हो तृप्ति है। तो ये शुरुआत है, और इसीलिए भले हम अभी हमें साक्षात्कार नहीं हुआ है कि हम शरीर नहीं आत्मा है, पर इन वेगों को धीरे धीरे नियंत्रण करेंगे तो फिर ऑटोमेटिकली हम समझ जाएंगे कि हम शरीर नहीं आत्मा है। और जिस हद तक हम शरीर नहीं आत्मा है समझेंगे, ये वेग धीरे धीरे कम होते जाएंगे। दोनों इंटरकनेक्टेड है। वेगों को पालन करेंगे तो आत्मा है समझ जाएंगे, जितना हम आत्मा है समझ जाएंगे तो वेगों का नियंत्रण धीरे धीरे कम हो जाएगा। जब व्यक्ति अपने आप को शरीर समझ बैठता है तो ये वेगों में फंस जाता है, और जो इन वेगों का दास बन गया, गोदास बन गया, उसका जीवन अमंगल हो जाता है, सब पूर्ण रूप से अमंगल हो जाता है। तो इसीलिए जो व्यक्ति इन वेगों को नियंत्रण करने की स्वेच्छा से कोशिश करता है उसे कहते हैं तपस्वी। तो तपस्या का मतलब इन वेगों को नियंत्रण करने की कोशिश करना, स्वेच्छा से, वॉलंटरीली, अपनी इच्छा से, इसको कहते हैं तपस्या। इस श्लोक के अनुसार यह तपस्या है। पश्चाताप मतलब आज तक मैंने रजो और तमोगुण के वश में आकर इन वेगों का सुनते हुए मेरा जीवन अमंगल बना दिया, इस भौतिक संसार के चक्कर में फंस गया हूं। अब मैं समझ गया हूं कि मेरी गलती थी और अब मैं दास बनना चाहता हूं, भगवान का दास बनना चाहता हूं। अगर भगवान का दास बनना चाहता हूं तो गोदासत्व से हटना पड़ेगा मुझे और गोस्वामी बनना पड़ेगा, ताकि मेरे इंद्रियों को भगवान के दासत्व में लगा सकूं। जब तक हम इंद्रियों के स्वामी नहीं बनेंगे, ऋषिकेश से बनो तो ऋषिकेश के सेवा में कैसे लगाएंगे, तो गोस्वामी बनना जरूरी है। और इसीलिए तपस्वी का मतलब है ये छह वेगों को नियंत्रण करने की कोशिश करना। और जब ये तपस्या से इन छह वेगों को जिस हद तक आप नियंत्रण करेंगे, उस हद तक बहिरंग शक्ति जो है, भगवान की बहिरंग शक्ति, माया शक्ति, उसके चंगुल से, उसका चंगुल जो है धीरे धीरे खोलता जाएगा, उसके पकड़ से हम धीरे धीरे बाहर निकल पड़ेंगे। मामेव ये प्रपद्यन्ते मायामेताम तरन्तिते, दैवी एषा गुणमयी मम माया दुरत्या। ये तो बहुत मुश्किल है। अब सबसे पहला है वाचो वेगम, बोलने का वेग, बोलना बोलना, पट 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 पट, हमेशा बोलते रहता आदमी। तो प्रभुपाद जी बहुत सुंदर उदाहरण देते, ये बड़बड़ाना, एक व्यक्ति का बड़बड़ाना, मनुष्य का बड़बड़ाना कैसा है, 24 घंटे बड़बड़ 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 बोलते रहना, कुछ ना कुछ बोलते रहना, चुप बैठ नहीं सकते लोग। देखिए कि कोई मार्केट में जाइए, कुछ ना कुछ बोलते रहते, ट्रेन में जाइए, बस में जाइए, चुपचाप बैठ नहीं सकते, कोई दो मिनट के लिए भी बैठना बड़ा मुश्किल। तो ये कैसा है, ये मेंढक का टर्राने के बराबर है। बारिश के दिनों में आप देखेंगे मेंढक होते हैं, पूरी रात भर थकते नहीं है लोग। और ये क्यों कर रहे हैं, टर्राना क्यों कर रहे हैं, ताकि जो क्या बोलते हैं, स्त्री मेंढक, हाँ मादी मेंढक, उसको आकर्षण करने के लिए कि मैं यहां हूं, टर आ जाओ, क्योंकि अंधकार है, किसी को दिखता नहीं है, मैं यहां हूं, कैसा पता चले उसको, तो टर करता रहता है। पर इस मूर्ख को ये नहीं मालूम कि ये कह रहा है सांप को, टर मैं यहां हूं, और सांप को पता चल जाता है कि मेंढक कहां है, और सांप को मेंढक बहुत अच्छा लगता है, तो इसको लगता है कि मैं भोग करूंगा, अभी वो आएगी, टर करता रहता है, पर सांप आके उसे निगल जाता है। तो इस तरह से हम हमारे जो बड़बड़ाते रहते हैं हम लोग, बोलने की बहुत शक्तिशाली, ये बोलने की शक्ति जो है बहुत ही शक्ति है इसके अंदर। श्रवणम हमें मालूम है, जो भक्ति में उसे मालूम है, अरे किसी का सही व्यक्ति से, सही भावना से अगर सुना तो बंधन से मुक्त होकर भगवत धाम जाने की शक्ति इसके अंदर है, बोलने की शक्ति। तद्वाम विसर्गो जनताग विप्लवो, उसके अंदर इतनी शक्ति है, पर इस शक्ति का हम लोग दुरुपयोग करते हैं, बड़बड़ बड़बड़ बड़बड़, कुछ ना कुछ जो मन में आया बड़वा बकवास। हमें नहीं मालूम काल सर्प हमें निगल रहा है, काल सर्प हमें निकल रहा है। हरेक सूर्योदय और हरेक सूर्यास्त यानी जो काल सर्प है थोड़ा निकला हमको, थोड़ा निकल गया, थोड़ा निकल गया। तो काल सर्प हमें निकलता जा रहा है, देखते देखते एक साल हो गया, पांच साल हो गया, दस साल हो गया, खत्म हो गया मनुष्य जीवन। तो काल सर्प हमें निकल रहा है, हर रोज हम एक दिन मृत्यु के पास चले गए, काल सर्प हमें निकल रहा है। एक बार हमारे नेशनल ज्योग्राफिक बोल के एक मैगजीन आता है, पाश्चात्य देश का मैगजीन है, बहुत ही सुंदर फोटोज होते हैं उसके अंदर, मतलब ऐसा रेयर फोटोग्राफ्स जो जनरली कोई नहीं ले पाता ऐसा फोटोग्राफ। तो उसमें मैंने एक सुंदर फोटो देखा, इतना बड़ा बेडुक मेंढक है वो, और उसको एक सांप रे, छोटा सा सांप है पर उसने मुंह इतना बड़ा किया है, और पीछे से आधा हिस्सा सांप के मुंह के अंदर चला गया, आधा उसका शरीर सांप जो मेंढक का अंदर चला गया, और उसे धीरे धीरे निकलता है वो सांप, निकल रहा है, और मेंढक का आधा जो बाहर का जो सामने का हिस्सा बाहर है और पीछे का हिस्सा ऑलरेडी सांप के मुंह में है, और सामने से एक छोटी सी मक्खी जा रही और वो मेंढक जीवा को फेंक के उसको पकड़ने की कोशिश कर रहा। क्या सुंदर फोटो निकाला उसने कि आधा शरीर तो अंदर चला गया, उसे मालूम है कि मैं मर रहा हूं पर फिर भी उसकी इंद्र तृप्ति नहीं गई। अरे एक मिनट की चलो खा लू मैं, कम से कम उससे पहले अंदर घुसने से पहले इसको तो अंदर घुसा लू मैं। वो मतलब मृत्यु तक आने के बावजूद भी आदमी समझता नहीं है और बड़बड़ बड़बड़ करते रहता है, समय बर्बाद कर देता है लास्ट मोमेंट तक। तो इसीलिए ये वाचो वेगम जो है बहुत ही शक्तिशाली है और इसको नियंत्रण करना भी बहुत मुश्किल है, इतना आसान नहीं है। तो इसको कैसा नियंत्रण किया जाए, एक तरीका है मौन व्रत, कुछ नहीं बोलेंगे। अच्छा है कुछ नहीं बोलने से, कुछ बोलने से बड़बड़ करने से कम चुप तो बैठो। बापूजी के तीन बंदर हमने देखे, महात्मा गांधी के टेबल के ऊपर हमेशा ये तीन बंदर होते थे, एक का आंख बंद, एक का कान बंद, एक का मुंह बंद। बुरा नहीं बोलूंगा, बुरा नहीं सुनूंगा, बुरा नहीं देखूंगा, अच्छा है, पर ये तीनों चीज बंद करके कैसा प्रैक्टिकली काम करेंगे हम लोग? अगर आप ऑफिस जाना और तीनों बंद कर देंगे आंख और कान और मुंह तो फिर प्रैक्टिकल नहीं है। हाँ जिस समय तक मुंह बंद है अच्छा है, कुछ नहीं करने उल्टा सीधा बोलने से कुछ ना बोलो तो अच्छा है। जैसे उदाहरण देते प्रभुपाद जी, जब एक बच्चा बहुत भाग दौड़ करता रहता है, बहुत मस्ती करता है, तो उसे पिताजी क्या करते, बोले दीवार में नाक करके बैठो, नाक लगा के बैठो, ऐसा चुपचाप हिलना नहीं उधर से, तो चुपचाप बैठा रहता वो, अच्छा है कुछ नहीं कर रहा, मस्ती नहीं कर रहा है, पर कितना देर बैठेगा? वो बच्चे का स्वभाव नहीं है ऐसा बैठना, बच्चे का स्वभाव है खेल कूद करना, क्रियाशील, हमेशा भागता रहता है, दौड़ता रहता है। तो माँ उसको बुलाती है और बोलती है चल मैं अभी बर्तन धो रही हूँ, उसमें मदद कर तू भी। तो फिर वो बहुत अच्छा लगता है, साबुन के पानी में उसको धोते रहता है, तो वो भी खुश और काम भी हो गया। तो इस तरह से फालतू बोलने से अच्छा है कि मौन व्रत रखो, पर मौन व्रत परमानेंट सॉल्यूशन नहीं है। भगवान ने मुंह दिया है मौन व्रत रखने के लिए नहीं, भगवान ने मुंह दिया हर एक चीज सृष्टि में, जो कुछ भी भगवान ने बनाया है उसका एक उद्देश्य है और उद्देश्य को जानना बहुत जरूरी है। तो फालतू बोलने से अच्छा है कि मुंह बंद करके रखो, मौन व्रत रखो। और अगर मुंह को भगवान के गुणगान में लगाया जा सकता है तो उससे बेहतर चीज कोई नहीं है। अम्बरीश महाराज भागवत में वर्णन है, वाचांसी वैकुंठ गुणानु वर्णने, वाचांसी अपने वाणी को उन्होंने वैकुंठ गुणा अनुवर्णने, भगवान के गुणगान में हमेशा के लिए लगा दिया, हमेशा भगवान का गुणगान किसी ना किसी तरह से, अगर बोला तो कृष्ण के संबंधित कुछ बोलो, नहीं है तो चुपचाप मुंह बंद करके बैठो। अच्छा, तो सही में इंद्रियों वाणी के वेग को अगर नियंत्रण करना है तो एक ही तरीका है, कृष्ण के बारे में बोलो, कृष्ण के संबंधित बोलो। कोई भी बोलना है तो ऐसी चीज बोलो जो कृष्ण से संबंधित हो। भगवत गीता बहुत अच्छी तरह से समझाती है कि वाणी की तपस्या क्या है। तीन प्रकार की तपस्या बताई, 17वें अध्याय में भगवान ने तीन प्रकार की तपस्या बताई है, वाणी की तपस्या, मन की तपस्या, शरीर की तपस्या। वाणी की तपस्या क्या है? अनुद्वेगकरं वाक्यं सत्यं प्रियहितं च यत् स्वाध्यायाभ्यसनं चैव वाङ्मयं तप उच्यते। अनुद्वेगकरं वाक्यं, अगर बोलना है तुम्हें तो ऐसी वाणी बोलो अनुद्वेगकरं, जो दूसरों के हृदय में उद्वेग पैदा नहीं करे। उद्वेग यानी दूसरों के मन में विचलित हो जाना, हृदय में विचलित हो जाना। कुछ ऐसे शब्द बोलना जो, और ऐसे वाक्य बोलना जो दूसरों के मन में विचलित हो जाए। अनुद्वेगकरं वाक्यं, दुर्योधन का स्वभाव ही ऐसा था, वो कभी सीधा नहीं बोलेगा, कुछ ऐसा बोलेगा, ऐसा टेढ़ा घुमा के बोलेगा कि सुनने वाला बहुत दुख हो। अनुद्वेगकरं वाक्यं, वाक्य हमें ऐसा बोलना है जो किसी के मन में उद्वेग नहीं मचाए। हां, कभी कभी गुरु कुछ शिक्षा देने के लिए अपने शिष्यों को ऐसे वाक्य कह सकता है, उनको कुछ सिखाने के लिए, उनको गलत आदर्शों से उठाने के लिए कटु शब्द बोल सकता है। पर गुरु भी अगर उनके शिष्य नहीं है, अगर कोई और व्यक्ति है तो नहीं बोलता है। अनुद्वेगकरं वाक्यं, तो सोचते वक्त, बोलने से पहले हमें सोचना चाहिए, क्या यह सही में जरूरी है, क्या सही में उसको नाप तोल के बोलना। कोई भी बात है, कभी कभी हम लोग बिना सोचे एक ऐसे वाक्य बोल देते हैं, और कभी कभी एक वाक्य जिंदगी भर हम वो बाद में पछताते रहते, ऐसा क्यों बोला मैंने, मेरी इच्छा ही नहीं थी ऐसा बोलने की, पर उस समय पता नहीं क्यों ऐसा बोल दिया। कभी कभी बड़ी बड़े लड़ाई, बड़े बड़े युद्ध हो गए एक वाक्य के ऊपर। और खास करके बड़े बड़े प्राइम मिनिस्टर जो हैं, प्राइम मिनिस्टर प्रेसिडेंट, उसने एक वाक्य बोल दिया, उसको लेकर लोग कोर्ट में चले गए, बाद में उसको वो वाक्य वापस लेना पड़ा। राजीव गांधी ने एक बार बताया था, कलकत्ता इज ए डेड सिटी, किसी इतने लेक्चर देते वक्त ऐसे, कलकत्ता इज ए डेड सिटी, सारे कलकत्ता वासी बोले कैसा ऐसा बोला, डेड सिटी कैसा बोला इसने, मरा हुआ शरीर है क्या हमारा, हम लोग सब जिंदे नहीं है क्या। तो बाद में उनको वापस लेना पड़ा। तो अनुद्वेगकरं वाक्यं, वाक्य जो बोलना है अनुद्वेगकरं, और सत्यं, जो भी बोलते हैं सत्य, सत्य यानी शास्त्रों के आधार पर होना चाहिए। अगर मैं कुछ बोल रहा हूं इमीडिएटली शास्त्र का कोटेशन बोल के मैं कह सकता हूं शास्त्र में ऐसा वर्णन है, मैं अपनी मनगढ़ंत बात नहीं बोल रहा हूं, ये शास्त्रों का कहना है सत्यम। जैसे कोर्ट में अगर कुछ बोलना है तो प्रीवियस कोर्ट जजमेंट जो है या लॉ बुक्स में से बोला जाता है। तो इसी तरह से अनुद्वेगकरं वाक्यं सत्यम, सत्य बोलना चाहिए। पर प्रियम, सत्य है पर अगर बहुत कठोर है तो थोड़ा प्रेम से बोलना चाहिए, प्रियम, उसको अच्छी तरह से पैकेजिंग करके बोलना चाहिए। अगर डॉक्टर आ गया, कैंसर है, 3 महीने में तू गया, अरे 3 महीने में 3 सेकंड में वो गया हो डर के मारे, आधा आधा जान तो उसी चला जाएगा उसको, सत्य बोला, अरे मैं सत्य बोला, भगवत गीता में बोला सत्य बोलो, उसको बोला मर जाएगा अभी तो, बस खत्म। तो 99% तो वही मार दिया उसको। तो सत्य प्रियम, प्रियम का मतलब है सत्यम ब्रूयात प्रियम ब्रूयात न ब्रूयात सत्यम अप्रियम, सत्यम ब्रूयात। नीति शास्त्र कहता है सत्यम ब्रूयात प्रियम ब्रूयात, सत्य बोलो प्रिय बोलो। कैसे? भगवान ने खुद दिखाया भगवद गीता में, अर्जुन उल्टी सीधी बातें कर रहा था, मैं नहीं लड़ूंगा, उल्टा सीधा मूर्ख जैसे बातें कर रहा था, पर भगवान बोल सकते थे मूर्ख कहीं का, तो भगवद गीता में आता मूर्ख हे अर्जुन नहीं बोले भगवान, बड़े प्रेम से बोले। कैसे बोले? अशोचान अन्वशोचस्तम प्रज्ञावादांश भाषसे गदासून गदासूंच नानुशोचन्ति पंडिता। अशोचान अन्वशोचस्तम, जो शोक करने योग्य नहीं है उसके लिए शोक कर रहे, जैसे बच्चे लोग कभी गुड़िया टूट गया तो शोक करते, बड़े लोग हंसते बोले क्या है छोटा सा गुड़िया टूट गया तो हाल मूर्ख कहीं का। अशोचान अन्वशोचस्तम, जो जिसके शोक करने योग्य नहीं है उसके उसके लिए शोक कर रहे हो। प्रज्ञावादम, बड़े बड़े प्रज्ञावान जैसे बात कर रहे हो। गतासून अगतासूंच न अनुशोचन्ति पंडिता, बड़े बड़े पंडित लोग ऐसे नहीं शोक करते अर्जुन, इसका मतलब तू पंडित नहीं है, इसका मतलब तू, मैंने नहीं कहा तो कहने का तरीका होता है सत्यम प्रियम। तो अनुद्वेग करम वाक्यम सत्यम प्रिय हितम, और जो भी हम बोलते हैं अगर दूसरों के हित में नहीं हो, दूसरों को कि चेतना को उठाता नहीं हो, दूसरों की उसमें भलाई नहीं हो, तो बोलो ही मत, मुंह बंद करके रखना अच्छा है। ये एक सभ्य समाज, एक खास करके वैष्णव समाज, ये लक्षण है। अनुद्वेग करम वाक्यम सत्यम प्रिय हितम चयत, और स्वाध्यायाभ्यसनम। स्वाध्याय, स्वाध्याय मतलब बहुत सारे शास्त्र हैं, शास्त्रों का हमेशा उच्चारण करना, शास्त्रों को पढ़ना, शास्त्रों का रेसिटेशन क्या बोलते हैं पठन करना। कितने लोग हैं जो विष्णु सहस्र नाम है और ये स्तोत्र है, वो अष्टक है, वो दशक है, वो द्वादश स्तोत्र है, ऐसे बहुत सारे हैं कुछ ना कुछ ये वाणी की भूषण है ये, कि हमेशा भगवद गीता का 15वां श्लोक 15वां अध्याय ये अध्याय वो अध्याय, स्कूल में पहले सिखाया जाता था, दुर्भाग्यवश अभी वो नहीं सिखाते, अभी वो टीवी का एडवर्टाइजमेंट सब सीख लेते, थोड़ा म्यूजिक आया तो पूरा एडवर्टाइजमेंट गाने लगते बच्चे। तो छोटे उम्र से अगर हमको ये सब अच्छे अच्छे श्लोक सिखाएंगे, भगवान का गुणगान, अलग अलग श्लोक, अलग बहुत अच्छा है। स्वाध्याय अभ्यसनम चैव वाङ्मयम् तप उच्यते, ये तपस्या है वाणी की, मुंह खोलना है तो ऐसे खोलो, नहीं तो मुंह बंद करके रखो, अच्छा है। और कुछ लोग तो बोलते हैं और कुछ लोग लिखते भी हैं, अगर वो बोलेंगे तो 10 लोग सुनेंगे, पर उनकी इच्छा है पूरी दुनिया सुने, तो उनका जो बड़बड़ जो करना है उसको कैसेट में डाल के बेचना या उसको पुस्तक लिख के बेचना। अब सड़क पे देखेंगे हजारों लाखों पुस्तक, वो कुछ बड़बड़ कर रहा है, अपनी मन की बातें कह रहा है, वो उपन्यास, बहुत सारे नॉवेल, बहुत सारे कहानी, क्या है ये सब? किसी के मन में जो बात है उसने उसको लिखा है और पूरी दुनिया को सुना रहा है, और खरीद के हम लोग पढ़ रहे हैं उसको, उसके सारे जो वाचो वेगम हमारे कान में जाने दे रहे हैं। तद्वाग विसर्गो जनताग विप्लवो यस्मिन प्रतिश्लोकम अबद्धवत, अगर लिखना भी है तो ऐसे शास्त्रों के आधार पर कुछ लिखेंगे और पुस्तक वितरण करते हैं हम लोग, प्रभुपाद जी की पुस्तक वितरण करते हैं, ये एक्चुअली वो पढ़ेंगे तो अच्छा है कम से कम, और उसके बारे में कुछ बोलेंगे तो वो ठीक है। तो इस तरह से ये वाचो वेगम, दूसरा मनस वेगम, मनोवेगम, मन का दो वेग है जैसे मैंने बताया पहले। मन इसको नियंत्रण करना बहुत मुश्किल है। वाणी को तो मुंह बंद करके नियंत्रण कर सकता, एटलीस्ट हमारे हाथ में उसको पकड़ सकते हैं, मुंह बंद कर सकते हैं, पर मन को पकड़ नहीं सकते। चंचलम नि मन कृष्ण परमाथि बलव दृढ़ तस्याहम निग्रह मन्ये वायोरिव सुदुष्करम। महाबाहो अर्जुन बड़े बड़े तीर चला के बड़े बड़े आंधी को रोक सकता था, पर अपने मन को रोक नहीं पाया। चंचलम ही मन कृष्ण प्रमाथि बलव दृढ़, तो मन को कैसा नियंत्रण करे। हमारे यश हमारे वश में नहीं है। मन मनस्त्रायते इति मंत्र हम भगवान को बोलते कि प्रभु आप संभालो ये मन मेरा, मैं आपके चरणों में सौंप रहा हूं। सवई मन कृष्ण पदारविंद यो, सबसे पहले मन को भगवान के चरण कमलों में रखो। और वो रखने का तरीका क्या है? कृष्ण सूर्य समा माया है अंधकार, जहां कृष्ण तहां नहीं माया अधिकार। अगर कृष्ण को हम अपने मन में लाएंगे स्मरण करके, अगर भगवान का स्मरण हो मन में हमेशा, तो जहां भगवान है जहां सूरज है वहां अंधकार नहीं हो सकती, जहां कृष्ण है वहां माया नहीं हो सकती। इनफैक्ट सच में देखा जाए तो सारे विधि निषेध शास्त्र का एक ही उद्देश्य है, स्मर्तव्य सततम विष्णु विस्मर्तव्यो न जातु चित्त, सर्वे विधि निषेधा स्यु एतयोरेव किंकरा। सारे विधि निषेधों का उद्देश्य यही है कि हमेशा भगवान का स्मरण बनी रहे और कभी विस्मरण ना हो। तो हमारे कार्यकलाप भी ऐसे होना चाहिए, हमारे जीवन को हम लोग ऐसे करना चाहिए कि हमेशा भगवान का स्मरण होते रहे। एक घर में मैं गया था, बहुत सारे कैलेंडर ये वो सब लगे हुए, जो भी देखो कृष्ण। और एक घर में गया था मैसूर में, वो गणेश जी के भक्त हैं, अरे डोर का हैंडल भी गणेश जी का ऐसा हैंडल ऐसा होना, अब भूल ही नहीं सकते जहां भी जाओगे तो कुछ ना कुछ सब कुछ ऐसा। तो कृष्ण सूर्य समा, कृष्ण जो है तो हमेशा अगर कुछ अनुकूल वातावरण बनाए ताकि कृष्ण का स्मरण हमेशा होते रहे, तो माया है अंधकार, जहां कृष्ण तहां नहीं माया अधिकार। तो जैसे पता नहीं आजकल आता है कि नहीं, पहले 10-20 साल पहले, आजकल तो दूसरा पैराशूट का तेल आता है, पहले एक टिन आता था, पतरे का डब्बा आता था, उसमें ये कोकोनट ऑयल और वो पूरा टिन पैक होता था, उसमें एक छेदा करो आप और ऐसा करो तो कुछ निकलेगा ही नहीं क्योंकि पूरा पैक हो गया, वो तो दूसरा छेदा करना पड़ता है ऊपर से, तो दूसरा छेद किया तो वहां से हवा जाएगा तो इधर से आएगा बाहर। इस तरह से अगर तन्मय हो पूरा कृष्ण में तो फिर माया को जगह ही नहीं अंदर, और जब थोड़ा जगह होगा तब कृष्ण निकलेंगे। हमने अगर माया को जगह दे दिया अपने मन में तो कृष्ण बाहर चले जाएंगे, और कृष्ण है तो माया के लिए जगह नहीं। तो कृष्ण सूर्य समा माया है अंधकार। तो कुछ लोगों का कहना है, एक ज्ञानी मायावादियों का, कि शून्य बना लो मन को, मन को शून्य बना दो, कुछ सोचो मत, बिकम थॉटलेस, विचारहीन हो जाना। पर ऐसा दीर्घ काल तक नहीं हो सकता क्योंकि मन का तीन फंक्शन है, कार्य ही तीन है, थिंकिंग फीलिंग एंड विलिंग, सोचना और फीलिंग अनुभव करना और विलिंग इच्छा करना, ये तीन मन का स्वभाव है। तो मन को शून्य करने के बदले जो कृत्रिम रूप से है, जो ज्यादा समय तक नहीं कर सकते, जो प्रैक्टिकल नहीं है, जो हमेशा के लिए नहीं रहेगा, उससे अच्छा है थिंक अबाउट कृष्ण, कृष्ण के बारे में सोचो, फील योर ह्यूमिलिटी, आउट ऑफ ह्यूमिलिटी फील दैट योर, हमारे कैसा हम लोग अनुभव करते कि हमारे हमको कृष्ण के प्रति प्रेम नहीं है, कब जागृत होगा ये, और विल डिसाइड करो, मतलब इच्छा करो कि मैं भक्ति में प्रगति करूंगा, कृष्ण को अपने जीवन में उतारूंगा हर हर मोड में हर स्थिति में। तो मन को हमेशा प्लानिंग करना, योजना बनाना। कभी आप देखते हैं, कभी आपको बहुत काम रहता है, कोई बड़ा फेस्टिवल आ गया और 50 सेवा रहता है, ये करना है, वो करना है, वो करना है, तो मन को दूसरी चीज सोचने का टाइम नहीं रहता है। तो मन को जब प्रचार के बारे में हम लोग इतना जिम्मेदारी लेते हैं कि वो कर रहा है, ये करना है, वो करना है, और बिजी रहते हैं उसमें, तो दूसरे विचार आते नहीं। और वो अगर कृष्ण से संबंधित हो तो बहुत ही अच्छा है वो, कि दूसरे विचार आएंगे ही नहीं। आइडल माइंड इज डेविल्स वर्कशॉप। वर्कशॉप मालूम है ना, वो काम करते रहता है अंदर बैठ के। तो जो आलसी मन है, कुछ काम नहीं है उसका, तो वहां माया अंदर घुसती है और उसका वर्कशॉप बना लेती हो उसका, उसके मन को। इसीलिए अच्छा है कि हमेशा योजना बनाते रहें कि किस प्रकार से हम पृथ्वी के आचे जतन अगर आदि ग्राम सर्वत्र प्रचार हुई होगा, इतने महाप्रभु कैसा प्रचार करे, कैसा बड़ा। तो इस तरह से सोचते रहेंगे, प्लानिंग, योजना बनाना, और उसको सोचना किस तरह से हम उसको करेंगे, वो उस तरह से मन जो है अपने आप नियंत्रित हो जाता है। तो हमेशा कृष्ण के बारे में सोचना और किस तरह से कृष्ण की सेवा में लगा जाए, कैसा बढ़ाया जाए, ये हमेशा योजना सोचते रहना। एक भक्त हमेशा सोचते रहता है कि कैसा ये प्रचार बढ़े, कैसा ये पुस्तक वितरण बढ़े, कैसा ये बढ़े, कैसा ये भक्त बने, कैसे ज्यादा लोग बने, और उसी में विचार रहता है, और इसीलिए तन्मय रहता है हमेशा कृष्ण। और जो जिस हद तक हम देखते हैं, जब भी हम सबसे व्यस्त रहे हैं तब माया से सुरक्षित रहे, और जब ढीले रहे तभी माया आक्रमण करती। एक बार एक भक्त मेरे पास आए और वो बोले 6 महीने के बाद, मतलब कृष्ण भावना में आने के बाद 6 महीने के बाद आए और बोले प्रभु जी आपसे कुछ थोड़ा बातचीत करने का है, बहुत अर्जेंट। तो मैं बोला ठीक है चलो बैठते हैं। तो बोला प्रभु जी कृष्ण भावना में आने से पहले मैं कितना सुखी था। जहां चाहे जाता था, जो चाहे खाता था, जो चाहे देखता था, जो चाहे सुनता था, मौज मस्ती में रहता था। और जब से आपके संग में आ गया, अरे बांध के रख दिया आपने, खाने से पहले सोचना लगता है, सोचना भोग लगाया है कि नहीं, कुछ सुनने से पहले ये माया है कि कृष्ण का भजन है, कुछ देखने के लिए जाना, देखने के लिए जाऊं कि नहीं, किससे मिलने जाता हूं, इससे मिलूं कि नहीं, ये मायावादी है कि भौतिकवादी है कि कर्मकांडी है, क्या है पता नहीं, मायावादी भाष्य सुनी ले होए सर्वनाश हमने सुना है, जाऊं कि नहीं, कुछ देखूं कि नहीं, कुछ करूं कि नहीं, कुछ बोलूं कि नहीं, अरे बांध के रख दिया आपने एकदम, ऐसा कुछ स्वतंत्रता नहीं है मेरा। तो मैंने कहा एक काम करो, आपके चरण की जो धूल है ना मेरे सर पे लगा, क्या प्रभु ये क्या बोल रहे हो आप। बोले भाई आप तो कृष्ण भावना भावित हो गए हो। बोला है क्या बोले, बोले हाँ कृष्ण भावना भावित मतलब यही है, पहले आप सोचते थे कि मेरे इंद्रियों को क्या अच्छा लगेगा, मेरे कान को क्या अच्छा लगेगा, मेरे जीवा को क्या अच्छा लगेगा, मेरे मन को क्या अच्छा लगेगा, पर अब आप सोच रहे हो ये कृष्ण के सेवा में अनुकूल है कि नहीं, ये देखना कृष्ण के सेवा के लिए अनुकूल है कि नहीं, ये सुनना कृष्ण की सेवा के लिए अनुकूल नहीं, ये कृष्ण भावना भावित है, आप हमेशा सोच रहे हो, क्योंकि कृष्ण का दास बन गए हो आप। जो दास हो गया है वो हमेशा मालिक की प्रसन्नता सोचता है, भले मुझे अच्छा लगे या बुरा लगे, मालिक खुश तो मैं खुश। बोली ये तो दास, ये तो परिपूर्णता है, जीवन की परिपूर्णता। सही में बोला अच्छा अच्छा, फिर पर फिर भी बहुत तकलीफ होता है। बोला हाँ तकलीफ तो है, तपस्या, यही तो तपस्या है, पहले तुम कुछ भी करते थे, त्रिविधम नरकस्य एदम द्वारम, ए हाईवे टू हेल, पहले नरक की ओर जा, तुमको लग रहा था स्वतंत्र हो पर सुपर स्पीड में आप नरक की ओर जा रहे थे, पर अभी ब्रेक लगाया आपने और धीरे से मोड़ा है और अभी अपहिल टास्क, ऊपर जा रहे हो वापस, पहले सीधा नीचे जा रहा था, अच्छा लग रहा था नीचे अधोगति, पर अभी ऊपर जा रहे हो ना, तो थोड़ा तपस्या है, आसान नहीं है। हजार लोग मस्ती मजाक करते हैं, कुछ लोग निंदा करते हैं, भले ठीक है, पर फिर भी हमको चलना है, आसान नहीं है ये मार्ग। पर ये कृष्ण भावना भावित है, हमेशा सोचना कि जो भी मैं कर रहा हूं ये कृष्ण की सेवा में अनुकूल है क्या, ये मदद करेगा। कैसा करना है जी, कि कृष्ण प्रसन्न हो, वैष्णव प्रसन्न हो, गुरु प्रसन्न हो। एक बार एक व्यक्ति ने प्रभुपाद जी से पूछा, ये बोला मन नियंत्रण नहीं होता है, मन तीन चार बार उसने पूछा मन नियंत्रण नहीं होता है। तो प्रभुपाद जी ने बोला मन को छोड़ो, सिर्फ चैतन्य महाप्रभु की सेवा करो बस, और चैतन्य महाप्रभु तुम्हारे मन को नियंत्रण करेंगे, उसकी चिंता तुम मत करो, तुम श्री चैतन्य महाप्रभु की सेवा की चिंता करो बस, और वो तुम्हारे मन को नियंत्रण करेंगे, उनकी सेवा है वो करेंगे। यानी फिर से वही बात कि अगर हम कृष्ण भावना में किस तरह से हमेशा मग्न रहे इसके बारे में अगर योजना बनाते रहेंगे, तो फिर ऑटोमेटिकली कृष्ण सूर्य समा भगवान मन में रहेंगे, तो दूसरे विचार स्वाभाविक रूप से दूर हो जाएंगे। और एक बार एक सन्यासी बता रहे थे कि अगर मन इधर उधर बहुत भागता है तो जोर से हरे कृष्ण बोलो, हरे कृष्णा, और ऐसा बोलोगे तो जैसे कभी बच्चे लोग कुछ दूसरे के बगीचे में सब आके मस्ती करते रहते, हे, सब भाग जाते, या कोई शेर अगर जोर से चिल्लाता है तो सारे पशु पक्षी भाग जाते, तो ऐसा हरे कृष्णा बोलेंगे तो सारे जो उल्टे सीधे विचार है सब चले जाएंगे। ऑफ कोर्स एक बार देवामृत महाराज आए थे, देवामृत स्वामी, हाँ, न्यूजीलैंड में प्रचार करते हैं वो, तो वो बोले न्यूजीलैंड में जितना माया है तुम लोगों को बताऊंगा ना तो तुम लोग बेहोश हो जाओगे, इतनी माया है उधर। पर बोले मैं एक ही काम करता हूं, और बोले मैं जब ऐसा कुछ भी ऐसा मन ऐसा कहीं विचलित हो रहा है, आंख इधर जा रहा है, कान इधर जा रहा है, और मन विचलित हो रहा है, तो मैं एक काम करता हूं, बोले मैं अंदर से पूरे जोर से चिल्लाता हूं नित्यानंद, नित्यानंद को चिल्लाता हूं मैं, और नित्यानंद के नाम लेते ही सब क्लियर हो जाता है। ऑफकोर्स उन्होंने बोला पर मैं पूरे अंदर से पेट से आवाज निकालता हूं पर बगल वाले को सुनाई नहीं देना चाहिए। ये तरीका है, क्योंकि अगर आप प्लेन में जा रहे हो और जोर से चिल्लाओगे नित्यानंद तो चार पांच लोग खिड़की से बाहर चले जाएंगे। बोले जोर से मत चिल्लाना, अंदर से चिल्ला होनी चाहिए, मतलब जैसा तीव्रता होनी चाहिए, ऐसा सिर्फ आवाज नहीं आना चाहिए मुझसे। मतलब तीव्रता होनी चाहिए कि कृष्णा क्या हो रहा है कुछ करो, तो तीव्रता से वो बोले कि विचार अगर बुरे विचार आ रहे हैं और ऐसे तो उसको अंदर से चिल्लाना तो उसे चला जाएगा। तो जैसे मैंने बताया भक्ति सिद्धांत सुजी ठाकुर कहते हैं मन के दो प्रकार की आसक्ति है, एक अविरोध प्रीति, कभी कभी हम लोगों को कुछ बुरे आदत से फंस जाते हैं हम लोग, और वो आदत के प्रति इतनी आसक्ति हो गई है, मालूम है पर छूटता नहीं है वो आदत, हमें मालूम है वो आदत ठीक नहीं है, या हमें कुछ किस प्रकार की मायावादी की फिलॉसफी हमने सुना है, सिद्धांत सुना है, वो छूटता नहीं है, या कोई कर्मकांडी चीज हमारे विचार हमारे मन में है वो छूटते नहीं है, या बुरे आदत है छूटते नहीं है, ये एक प्रकार का अविरोध प्रीति, आसक्ति हो जाना, अनर्थ अनर्थों से आसक्ति हो जाना, ये अविरोध प्रीति आसक्ति। और दूसरा है विरोध युक्त क्रोध, और उसको मैं उसमें कोई विरोध डाला तो उस व्यक्ति के प्रति, उस चीजों के प्रति, उस परिस्थिति के प्रति क्रोध हमारा, ऐसा क्यों किया, ऐसा क्यों बोला, देख लेता हूं। तो ये दोनों जो है मनोवेगम, मन का ही वेग है। और इस तरह से कृष्ण को और कृष्ण की सेवा के बारे में सोचते सोचते मन की वेग को धीरे धीरे, ऑफ कोर्स ये एक दिन में नहीं होने वाला, ये अभ्यास है, इट्स अ लाइफ टाइम प्रोजेक्ट, धीरे 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 आदत हो जाएगा, कोई भी आदत आसानी से नहीं आता, धीरे धीरे होगा कृष्ण की कृपा से, वैष्णव की कृपा से। फिर क्रोध वेगम, जैसे कल हमने चर्चा किया क्रोध का दूसरा नाम है कामानुज। जैसे लक्ष्मण जी का नाम है रामानुज, राम अनुज। जहां राम जाते हैं उनके पीछे पीछे लक्ष्मण, जहां भी राम जाएंगे पीछे लक्ष्मण, ऐसे क्रोध का नाम है कामानुज। जहां काम जाएगा वहां क्रोध, कामात क्रोधो भी जायते। काम यानी नियंत्रण करने की इच्छा, भोग करने की इच्छा, और जब वो भोग नहीं कर पाते, नियंत्रण नहीं कर पाते, क्योंकि हम नियंत्रण करता नहीं है, हम भोगता नहीं है, तो भगवान तो भोगता है, भगवान नियंत्रण करता है। जब चीज हमारे नियम के अनुसार, हमारी इच्छा के अनुसार नहीं काम करती तो क्रोध आता है हमको, क्यों ये बच्चा ऐसा नहीं करता, क्यों ये मेरा नहीं मानता, तो क्रोध आ जाता है। तो कामा क्रोधो भी जायते। तो क्रोध स्वाभाविक है, क्रोध ऐसे ही नहीं जाने वाला। तो आचार्य लिखते हैं कि ये सारे चीजों को जोड़ा जा सकता है, काम कृष्ण कर्मार्पणे क्रोध भक्त द्वेषी जने लोभ साधु संगे हरि कथा कृष्ण मोह इष्ट लाभ विने मद कृष्ण गुण गाने नियुक्त करिवे यथा यथा। बोलते काम कृष्ण कर्मार्पणे, काम को निकाल नहीं सकते, इतना आसान नहीं है, करोड़ों जन्मों से हमने इसे पाल पोस के बड़ा किया है, ये जाएगा नहीं अभी इतना आसानी से। काम कृष्ण कर्मार्पणे, एक कामुक व्यक्ति हमेशा सोचते रहता है ये काम वासना कैसे तृप्त करे, ये काम की जो ऑब्जेक्ट है या वस्तु है उसको कैसे प्राप्त किया जाए। तो काम कृष्ण कर्मार्पणे, कृष्ण की सेवा के प्रति कामुक होना चाहिए, हमेशा उसी के बारे में सोचता है। काम कृष्ण कर्मार्पणे क्रोध भक्त द्वेषी जने, भक्तों के का जो द्वेषी है, ऐसे व्यक्तियों के प्रति हमारा क्रोध दिखा सकते हैं। चैतन्य महाप्रभु कहते त्रिणादपि सुनिचेन तरो दिवस सहिष्णुना, और वही चैतन्य महाप्रभु जब नित्यानंद प्रभु के ऊपर आक्रमण हुआ तो इतने क्रोधित हो गए कि सुदर्शन चक्र लेके मारने आ गए दोनों को, जगन मदाई को। वो दिखाए कि क्रोध अगर करना है तो ऐसी चीजों में कर सकते, न कि वैष्णव के ऊपर या भगवान के ऊपर। क्यों ऐसा किया, मैंने इतने साल से जप किया, ऐसा क्यों हुआ मुझे। कभी कभी क्रोध भगवान के ऊपर दिखाते हम, क्रोध भक्त द्वेषी जने। ये हनुमान जी, प्रभुपाद जी दो उदाहरण देते, हनुमान जी का, हनुमान जी क्रोधित हो गए, बिना क्रोधित हुए लड़ेगा कैसा आदमी। ऐसा नहीं कि लड़ाई में जाके नहीं नहीं पहले आप, नहीं नहीं पहले आप चलाओ पहले थी, ऐसे नहीं होगा। अर्जुन बोल रहा था पहले आप, पर जब उसको क्रोध भड़काया महाभिकम शरणम रजा माम अनुस्मर युद्ध, फिर उसने लड़ा। तो क्रोध भक्त द्वेषी जने, लोभ साधु संगे हरि कथा। लोभ जो है, एक लोभी आदमी उसको आप जितना भी दो, और थोड़ा दो ना, और थोड़ा, दो बार लाइन में खड़ा होगा फिर तीसरे बार भी लाइन में खड़ा होगा, और एक बार खाना, और एक बार, अरे बोला तीन बार दिया ना, नहीं चौथा बार दे दो ना, और एक बार, पर फिर नहीं आऊंगा। तो लोभी आदमी जितना भी दो तृप्त नहीं होता। तो लोभ साधु संगे हरि कथा, संतों के संग में हरि कथा के लिए लोभ होना चाहिए, जोड़ दो उसको लोभ को। हफ्ते में एक दिन होता है सत्संग, अच्छा दो बार नहीं होता, नहीं नहीं सिर्फ संडे को होता है, हाँ नहीं बुधवार को उधर होता है, मंगलवार पेट में, अच्छा शुक्रवार को कहीं होता है क्या, तो फिर अच्छा है। ये लोभ अच्छा है कि लोभ साधु संगे हरि कथा, और ज्यादा और ज्यादा, और थोड़ा कहीं मिलेगा क्या। मोह इष्ट लाभ भी नहीं, एक मोहित आदमी मोहित हो जाता है, इष्ट लाभ भी नहीं, इष्ट देव की प्राप्ति नहीं हुई तो मोहित हो जाना चाहिए, क्या हो गया, क्यों हो गया ऐसा। मद, मदोन्नत आदमी, बड़े मदोन्नत होकर कैसा चलता है आदमी, ऐसे मद कृष्ण गुणगान, जब कृष्ण का गुणगान जहां हो रहा है, हरि कीर्तन हो रहा है, तो वहां मदोन्नत हो जाओ, नाचो गाओ। मद कृष्ण गुणगाने नियुक्त करिवे यथा यथा। ऑफ कोर्स काम क्रोध लोभ मोह मद मात्सर, बोले उसके लिए जगह नहीं, उसके लिए जगह नहीं, उसको कहीं भी नियुक्त नहीं कर सकते आप, उसको हटा दो, वही थे वो इसको यहां लाया है हमको, ये मत्सरपाही हमको लाया है। और ये मत्सरपाही एक कारण है, असूया ये कारण है कि हम भगवत भगवान को भूल के आए हैं और भगवत धाम की प्राप्ति नहीं हो रही। इमं इदं तुते गुह्यतमं प्रवक्षामि अनुसूयवे। हे अर्जुन, तू ये ज्ञान को समझता है, समझ ये रहस्य को जान सकता है, क्योंकि मेरे ओर तुझे मत्सरता नहीं है, असूया नहीं है। तो असूया जो है यह मत्सरता है, इसके लिए आध्यात्मिक जीवन में कहीं स्थान नहीं है। और वो मत्सरता भगवान के ऊपर हो सकता है, भक्तों के प्रति हो सकता है, पर ये सब मामूली जीवों के प्रति भी हो सकता है। पर एक्चुअली जहां भी ये मत्सरता हो वो अंततः भगवान के प्रति है, क्योंकि यद्यद विभूति मत सत्वम श्रीमद ऊर्जितमेव वा तत्तदेवावगच्छत्व मम तेजोंश संभवम। किसी को कुछ मिली है तो वो भगवान की ही कृपा है, उसको मिली है, और उससे हम ईर्ष्या करेंगे, इसका मतलब हम भगवान से ईर्ष्या कर रहे हैं। तो मत्सरता को छोड़कर, ईर्ष्या भाव को छोड़कर, दूसरे जो सारे चीज को भगवान की सेवा में लगाया जा सकता है, जहां तक कि क्रोध भी, क्रोध भक्त द्वेषी जन। एक बार दिल्ली में एक पंडाल प्रोग्राम हुआ था 1970 में, बहुत अच्छा प्रवचन हो गया प्रभुपाद जी का। तो एक पाश्चात्य एक फॉरेन डिवोटी था, बहुत ही प्रभावित हो गया वो प्रभुपाद जी के इस प्रवचन से, पंडाल प्रोग्राम से। तो वो आया और प्रभुपाद जी को कहने लगा कि स्वामी जी, अगर कृष्ण भावना पूरे विश्व भर में फैलेगा तो क्रोध जो है जड़ से निकाल के फेंक देंगे, जड़ से निकाल के फेंक दिया जाएगा इस संसार से। तो प्रभुपाद ने उत्तर दिया, क्यों, क्रोध से तकलीफ क्या है? अरे पूरा गीता भगवान ने अर्जुन को सुनाया उसको क्रोधित करने के लिए। हम देखते हैं नरसिंह भगवान बहुत क्रोधित हो गए जब प्रहलाद महाराज को अन्य से शरीर हिरण्यकश्यपु ने बहुत सताया। तो दिव्य क्रोध का मतलब है जब भगवान की सेवा हम करना चाहते हैं और उसके बीच में कुछ बाधा आ जाती है उसके प्रति, या उसको भगवान की सेवा में, जैसे मैंने बताया का क्रोध भक्त द्वेषी ने, इन चीजों में लगाया जा सकता है। पर इसके अलावा जो क्रोध है वो हमको बंधन में बांधता है। ये क्रोध जो है एक चुल्लू भर पानी है जो हमको डुबा देगा। जिसने बड़े बड़े महारथी लोग, जिसने अपने इंद्रियों को काबू में कर दिया है, सब चीजों को काबू में कर दिया है, क्रोध के चुल्लू भर पानी में डूब मर जाता है। क्रोध बहुत बुरा चीज है, क्षणिक पागलपन है वो। क्रोध में आकर व्यक्ति कुछ ऐसा कर बैठता है, ऐसा कह बैठता है। दक्ष यज्ञ का देखो आप, दक्ष प्रजापति का यज्ञ, क्रोध आ गया दक्ष प्रजापति को और उसने कुछ कह दिया और उसका रिएक्शन होते 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 बढ़ते 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 क्या हो गया, अंत में बकरी का मुंडी आ गया उसे, बाद में नम्र हो गया, इसका कोई आदि अंत नहीं, और चेन रिएक्शन होते जाते। तो इस तरह से ये क्रोध वेगम, तो ये दोनों मन का वेग है। और भगवत गीता में भगवान कहते हैं मन की तपस्या क्या है, मन प्रसाद सौम्यत्वम मौनम आत्मविनिग्रह भाव संशुद्धि इत्येतत् तपोमान समुच्यते। मन की तपस्या क्या है गीता में भगवान बताते हैं, मनः प्रसादः, प्रसादः मतलब तृप्ति, सेटिस्फैक्शन। मन को हमेशा तृप्त रखो, तृप्त रखो का मतलब है मन के अंदर तृप्ति होनी चाहिए, और तृप्ति तब होगी जब काम या क्रोध या लोभ नहीं होगा। जिसके हृदय में काम वासना है, जिसके हृदय में क्रोध है, जिसका वो तृप्त नहीं है, वो हमेशा विचलित रहता है उसका मन। ये जैसा एक शीतल सरोवर है, शांत, एक आईने के समान है, पर उसमें थोड़ा ऐसा आप हिलाओगे, एक पत्थर फेंकोगे तो उथल पुथल हो जाएगा। इसी तरह से काम ये उत्तेजित करते हैं, हमारे मन को विचलित कर देते हैं, और खास करके इंद्र तृप्ति, विषय भोग करने की जो इच्छा है, इसको जब तक मन से नहीं हटाएंगे तब तक मन तृप्त नहीं रहेगा। वामन देव ने बलि महाराज को बोला ए बलि, बलि महाराज ने पूछा वामन देव को, क्या चाहिए तुझे? कुछ भी चाहिए, मैं देने के लिए तैयार हूं, हे ब्राह्मण मांग। तो वामन देव बोले, मेरा कद का 3 कद जमीन दे दो बस। तो वामन देव बलि महाराज ठहाका मारकर हंसने लगे, बोले मैं सोच रहा था तुम्हारा कद छोटा है पर तुम्हारी बुद्धि भी छोटी है। बोले किससे क्या मांग रहा है, मांगना भी नहीं आता तुम्हें, करोड़पति के जाकर, करोड़पति के पास जाकर बोलो कि 5 पैसा दे सकते हो क्या? बोले बेइज्जती कर रहे हो मेरा 3 फुट और तुम्हारा कदम का है ही, तुम्हारा इतना छोटा कदम। अरे कोई ग्रह मांग लो, सोना मांगो, कोई अच्छी ब्राह्मणी मांगो तुम्हारे लिए, कई गांव मांग लो, कुछ भी मैं देने के लिए तैयार हूं। तो वामन देव बड़ा महत्वपूर्ण प्रश्न, बहुत ही महत्वपूर्ण वाक्य कहते हैं कि हे राजन, जिस व्यक्ति ने अपने इंद्रियों को काबू में नहीं किया है वो पूरे विश्व की विषय भोग सब प्राप्त भी कर ले तो भी तृप्त नहीं रहेगा। मतलब इनडायरेक्टली बोल रहे, तू देखना तीनों लोगों को जीत लिया, इंद्र की पदवी पर बैठा हुआ है, अभी भी तू विचलित है, अभी भी तू तृप्त नहीं है, अभी भी और यज्ञ कर रहा है 100 यज्ञ। मुझे जितना जरूरी है उतना है मेरे पास, मैं तृप्त हूं। तो ये मन प्रसाद है, जिस स्थिति में भगवान ने हमें रखा है उसमें अगर तृप्त होना सीखे आदमी तो सबसे बड़ा ऐश्वर्यवान आदमी है वो, उसने मन को नियंत्रण किया है। क्योंकि स्वाभाविक रूप से और चाहिए, कुछ ना कुछ देखते और चाहिए और चाहिए और चाहिए, रावण के समान सब कुछ था उसके पास, त्रिपुर सुंदरियां, देवकन्या, ऋषिकन्या, राजकन्या सबको पकड़ के ला के रखा था उसने, सब मिस यूनिवर्स एक से बढ़कर एक। और उसे पता चला कि एक जंगलवासी जंगल में घूम रहा है जिसकी पत्नी बहुत सुंदर है, वो भी मेरे को चाहिए, वो क्यों भोग रहा है? मन उसका तृप्त था, सब कुछ ठीक था, एक बार उसने सुना, फिनिश, खत्म, उसकी तृप्ति बोला वो मुझे चाहिए, वो चाहिए, जब तक नहीं मिले पूरा नाश हो गया, फिर भी वो रोका नहीं अपने आप को। तो मन प्रसाद, मन को तृप्त रखना सबसे बड़ी मन की वेग है, वो तृप्त नहीं होता वो। हां भक्ति में तृप्त नहीं होना चाहिए, और हमको प्रगति करना है, और प्रगति करना है, और सुनना है, और कीर्तन करना है, और बढ़ाना है सेवा, उसमें तृप्ति नहीं चलेगा। वयम तु न वितृप्याम उत्तम श्लोक विक्रमे यत् शून्यताम रसज्ञानम स्वादु स्वादु पदे पदे। नैमिषारण्य में ऋषिगण कहते हैं कि और कहिए, और कथा सुनाइए, मैं इनको इतने सुनने से तृप्त नहीं हुआ, उसमें तृप्त नहीं होना है। पर भौतिक चीजों में सीताराम 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 कहिए, जाहिर विधि राखे राम ताहिर विधि रहिए। जिंदगी के डोर सौंप हाथ दीनानाथ के, महलों में रखे चाहे झोंपड़ी में वास दे। धन्यवाद निर्विवाद राम रस पीजिए, जाहिर विधि राखे राम ताहिर विधि रही। ऐ रखे जहां रखे हैं, भगवान को मालूम है कौन सा स्थिति मेरे लिए अच्छा है, वहीं रखे हैं, खुश रहो। एक बार तृप्ति नहीं है तो बहुत तकलीफ हो जाता है। कभी कभी हम देखते हैं, जब कृष्ण भावना में एक भक्त बता रहे थे, मुंबई में रहते हैं वो, तो भक्ति में आए और उसके बाद वो कह रहे थे कि प्रभु जी मेरे को कोई टेंशन ही नहीं। मैं बोला बहुत अच्छी बात है, पर बाद में बोले पर ये मेरा टेंशन नहीं है ना, इसको देख के लोगों को टेंशन हो गया, मेरे आसपास के लोगों को, कि इस व्यक्ति को टेंशन ही क्यों नहीं है आजकल, कि हम लोग सब इतने टेंशन से भाग दौड़ कर रहे हैं और ये चुपचाप बैठा हुआ है, जिस स्थिति में है उसका प्लानिंग नहीं कर रहा है अपना एम्पायर बढ़ाने का। तो क्योंकि मेरे को टेंशन नहीं है, मेरे सारे परिवार के सदस्यों को और पड़ोसियों को टेंशन हो रहा है, क्योंकि रजोगुण से धीरे धीरे उड़कर जब आदमी सत्वगुण में आता है तृप्त है, वही ठीक है, जिस स्थिति में है ठीक है, देगी जितना चाहिए जब चाहिए देंगे भगवान। ऑफ कोर्स कहना बहुत आसान है, व्यासासन पर बैठकर बड़ा बड़ा प्रवचन देना, उतर के आने के बाद देखना पड़ता है। बाद में बोलेंगे महाराज आज इतना ही खाना है। हाँ ऐसा कैसे, मैंने बोल के रखा था 2 घंटा पहले, प्रवचन के बाद मेरे को कम से कम 4 सब्जी बना के रखना। पर जैसे जैसे ग्रेजुअली एक दिन में नहीं आएगा, ग्रेजुअली जैसे जैसे हम प्रगति करेंगे भगवान की भक्ति में। और दूसरे अध्याय में अर्जुन जब पूछता है स्थितप्रज्ञस्य का भाषा समाधिस्तस्य केशव स्थितधी किम प्रभाषेत किम आसीत ब्रजेत किम, उसके उत्तर में भगवान कहते हैं दुःखेषु अनुद्विग्नमनः सुखेषु विगतस्फीतराग यः सर्वत्र अनभिस्नेहः तत्तत् प्राप्य शुभाशुभम् न अभिनन्दति न द्वेष्टि तस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठिता। यः सर्वत्र अनभिस्नेहः तत्तत् प्राप्य शुभाशुभम्, जिस स्थिति में भी कुछ भी आया तत्तेनुकंपम सुषमीक्षमाण भुंजाने एव आत्मकृतम विपाकम्, जिस स्थिति में भी वो धन्यवाद देता है भगवान को, धन्यवाद प्रभु यही मेरे लिए अच्छा है, ऐसा लात खा के ही मैं सुधरने वाला हूं, धन्यवाद आपने ये लात मारा सही तरीके से, और कुछ अच्छी चीज दिया तो कहता है कि प्रभु मेरा मैं योग्य नहीं हूं, पर मैं थोड़ा निरुत्साह हो रहा था तो उत्साह बढ़ाने के लिए आपने थोड़ा फ्री सैंपल दे दिया मुझे, थोड़ा मैं योग्य नहीं हूं ऐसा मान दे दिया, ऐसा धन दे दिया, ऐसा संपत्ति दे दिया, ऐसा सुंदर कुछ विषय भोग करने की चीजें दे दी। पुण्य कुछ अच्छे चीजों से खत्म हो रहा है, पाप कुछ बुरे चीजों से खत्म हो रहा है, खत्म होने दो, जिस स्थिति में रखा है चलने दो। मन प्रसाद, इस तरह से मन की वेग को आदमी जीत सकता है। मन प्रसाद सौम्यत्वम, अच्छा, और दूसरा शास्त्रों का अध्ययन करने से, क्योंकि शास्त्रों में खास करके श्रीमद् भागवत में ऐसे सुंदर सुंदर कथाएं हैं जिसके श्रवण मात्र से ये नात्मा सुप्रसीदति, मन तृप्त हो जाता है सिर्फ वो कथा सुनने से, ऐसे कथाओं को सुनना चाहिए। एक जिस स्थिति में भगवान ने रखा है शास्त्रों के द्वारा जानना चाहिए कि इससे अच्छी कोई परिस्थिति नहीं है, इसमें क्या अच्छा चीजें देखने की कोशिश करो, और फिर शास्त्रों में अच्छे अच्छे कथा जो मन को तृप्त करने वाली है उन उसका अध्ययन करके मन प्रसाद। फिर सौम्यत्वम, सौम्यत्वम मतलब डुप्लीसिटी नहीं होना चाहिए, सिंप्लिसिटी होना चाहिए, सरलता होनी चाहिए। जितना आदमी सरल रहेगा उतना उसका मन शांत रहेगा, पर जितना वो कपटी भाव है तब तक उसका मन विचलित रहेगा, क्योंकि हमेशा सोचता रहेगा इसको मैंने क्या बोला था, इसको कैसा बोलना चाहिए, इसको ऐसा बोलना चाहिए, उसको ऐसा घुमा के बोलना चाहिए। हम देखते हैं जो ऐसा स्वभाव के होते हैं, और ऐसा स्वभाव अगर हमारे विचार आ जाए तो मन हमेशा विचलित रहता है, उसका ऐसा क्यों, ऐसा ऐसा क्यों, और ऐसा सुनने पर भी हमारा मन विचलित हो जाता है। सौम्यत्व मतलब सरलता। एक्चुअली श्री चैतन्य महाप्रभु की कृपा उस व्यक्ति को मिलती है जो सरल है। मन की सरलता बहुत जरूरी है, नहीं तो पेनी वाइज पाउंड फूलिश। इस भौतिक संसार में थोड़ी चीज को प्राप्त करने के लिए हम कपट स्वभाव को अपनाते हैं, और उसके कारण दो पैसे की फायदा मिलती है इस भौतिक संसार में, पर करोड़ों जन्मों का नुकसान हो जाता है, फिर से इस भौतिक संसार में रह जाते हैं। चैतन्य महाप्रभु की कृपा जो है भवसागर को पार करने का वो नहीं मिल पाता है। तो ये डुप्लीसिटी, डुप्लीसिटी मतलब अलग अलग रूप दिखाना, बाहर से हां 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 और पीछे से कुछ और कहना, ये सबसे बड़ा खतरा है आध्यात्मिक जीवन के लिए। मन प्रसाद सौम्यत्व, स्ट्रेट फॉरवर्ड, जो है सो है। मन प्रसाद सौम्यत्व, और सौम्यत्व कैसा होता है, दो चीज, एक कपटता को हटाओ और सरलता को अपनाओ, और दूसरा अगर सौम्यत्व प्राप्त करना है हमेशा हर एक व्यक्ति की भलाई का सोचो, सही भलाई का, कि इस व्यक्ति की सही भलाई किसमें है। जितना हम दूसरे व्यक्तियों की भलाई के बारे में सोचते हैं उतना मन सौम्य हो जाता है, सरल हो जाता है, शांत हो जाता है, एक एक सरोवर के समान जो आईने के समान है, और उस आईने में परमात्मा नजर आता है। पर जब कपट हो जाता है तो विचलित हो जाता है, और ऐसे विचलित में अपना चेहरा भी नहीं दिखता है, भगवान चेहरा तो दूर की बात, परमात्मा भी नहीं दिखेगा। जितात्मन प्रशांतस्य परमात्मा समाहितः शीतोष्ण सुख दुःखेषु तथा मानापमानयो। जितात्मन, जिसने अपने मन को जीत लिया है प्रशांतस्य, जिसका हृदय एक आईने के समान साफ है, कपटता नहीं, सरल है, सौम्य है, हमेशा दूसरों की भलाई, सही भलाई के बारे में सोचता है और हमेशा सरल स्वभाव से रहता है, ऐसे व्यक्ति के लिए परमात्मा समाहित, उसने परमात्मा का साक्षात्कार कर लिया है, ब्रह्मभूत प्रसन्न आत्मा, हमेशा प्रसन्न रहेगा वो, क्योंकि उसके मन में सिर्फ दूसरों की भलाई का विचार है और सरल स्वभाव का है। तो मनः प्रसादः मतलब शांतता तब होगी जब विषय भोग के बारे में छोड़ देंगे और हमेशा वेदों में या खास करके भागवत में ऐसे कथा जो मन के लिए वह अनुकूल है, शांत करता है, ऐसे कथाओं का पढ़ेंगे। सौम्यत्वम तब आएगा जब कपटता छोड़ देंगे, सरलता अपनाएंगे और दूसरों की भलाई के बारे में ही सोचेंगे और कुछ नहीं करेंगे। मौनम, तीसरा है मौनम, पर अभी तो हमने कहा कि मौनम अनुकूल नहीं है, पर भगवत गीता में भगवान कहते हैं मनः प्रसादः सौम्यत्वम, तीसरा तपस्या है मन का मौनम। मौनम मतलब हमेशा व्यक्ति सोचते रहता है कि जीवन का उद्देश्य है आत्म साक्षात्कार, आत्म साक्षात्कार के लिए अनुकूल क्या है, इसके अलावा मैं और कुछ नहीं सोचूंगा और कुछ नहीं बोलूंगा। क्योंकि जब आदमी बड़बड़ाता है ना, इसका मतलब उसका मन चंचल है। आप बच्चों को देखिए, बच्चे चुपचाप नहीं बैठ सकते, मामा मामा ये पाइजे माला ये पाइजे, अगर वो लाने तक ये ना को ते पाइजे ते पाइजे, अरे अभी ये चाहते, चंचल है उनका मन, कभी इधर तो कभी उधर, कभी बंदर के समान चंचल जो मन है, और वाणी से पता लगता है उसका मन कहां है। 10 मिनट के अंदर 50 टॉपिक बोल दिया, अरे एक पहले एक प्रश्न पूछा, ध्यान से सुनो तो सही। कभी कभी कुछ लोग आते हैं, महाराज ये बुरा क्यों होता है भले लोगों को, अच्छा सुनो बोलता है, भरा ठीक है पर ये क्यों मर गया, अच्छा वो मर गया उसके बारे में बोलने गया, ये क्यों जिंदा हो गया, अरे एक तो सुनो पहले, एक प्रश्न पूछा उसका उत्तर तो सुनो। नहीं, बड़बड़बड़ मन इधर उधर, वाणी बड़बड़बड़ कर रहा है, इसका मतलब मन उसका उधर, जहां मन है वहां वाणी जाती है। तो गंभीरता मतलब सौम्य, मौनम, मौनम मतलब सोचना, बोलने से पहले सोचो, क्या मैं जो बोलने वाला हूं क्या उद्वेग उत्पन्न करने वाला है। बिफोर यू स्पीक एनीथिंग, थिंक वेदर इट इज नेसेसरी, वेदर इट इज राइट, वेदर इट इज काइंड। बोलने से पहले 3 चीज सोचो, एक क्या ये जरूरी है बोलना, अगर जरूरी नहीं है वो बंद करके रखो, क्या ये सही है मैं जो बोल रहा हूं क्या ये सही है, और तीसरा क्या ये अनुकूल है, क्या ये प्रीति, क्या जैसे बोला अनुद्वेगकरम वाक्यम सत्यम प्रिय हितम, क्या हितकारी है, क्या सचमुच में उसके लिए अनुकूल है, अगर नहीं तो चुप रहना अच्छा है। और मौनम का दूसरा मतलब है जितना मौन व्रत रखेंगे, मौन मतलब हमेशा आत्म साक्षात्कार के बारे में सोचना, क्या मेरे लिए अनुकूल है क्या मेरे लिए प्रतिकूल है। मनः प्रसादः सौम्यत्वम् मौनम् आत्मविनिग्रहः, आत्मविनिग्रह मतलब इंद्रियों को, मन को नियंत्रण करके रखना, और वो कब होगा, जब विषय भोग से अनासक्त होने की कोशिश करेंगे हम, जितना विषय भोग से अनासक्त हो जाएंगे उतना मन को नियंत्रण करके रखेंगे। मौनम आत्मविनिग्रह भाव संशुद्धि रित्येतत्, भाव संशुद्धि मतलब अपने अस्तित्व को शुद्ध करना, भाव संशुद्धि। और भाव संशुद्धि के कब होता है, जब हमारा व्यवहार स्ट्रेट फॉरवर्ड, स्ट्रेट फॉरवर्ड को क्या कहेंगे हिंदी में, सरलता, सरलता, स्ट्रेट फॉरवर्ड इन डीलिंग्स, व्यवहार में दूसरों के प्रति जो हमारा व्यवहार है वो स्ट्रेट फॉरवर्ड होगा, अगर सरल होगा तब समशुद्धि, भाव समशुद्धि, और दूसरा है इस तरह से हमारा जो मन है शुद्ध हो जाएगा। तपो मानस मुच्छते, तो भगवान ने कहा है इस तरह से मन को ये मन की तपस्या है। अच्छा, उसके बाद वाचो वेगम, मनसः क्रोध वेगम हो गया, फिर जिह्वा वेगम, जिह्वा वेगम, जिह्वा जो है जैसे मैंने बताया जिह्वा, उदर और उपस्थ, ये तीनों एक स्ट्रेट लाइन में है और एक का नियंत्रण चला गया तो दोनों का नियंत्रण चला जाएगा। जिह्वा में नियंत्रण नहीं है तो ज्यादा खा लेंगे, जरूरत से ज्यादा खा लेंगे तो फिर अनुकूल नहीं है भक्ति के लिए। तो इस तरह से जिह्वा और जिह्वा को एक बड़ा जहाज होता है, आपने देखा होगा बहुत बड़े बड़े जहाज होते हैं शिप, और उस जहाज को घुमाने के लिए एक छोटा सा लकड़ी का पट्टा होता है रडर, उसको बोलते हैं रडर, इतना ही पतला होता है बस 4-5 फुट का होता है, अगर वो रडर ऐसा घुमा दिया तो पूरा जहाज जो लाखों टन का, मैं लाखों टन बोलता हूं, लाखों किलो या हजारों टन का होता है, पूरा जहाज घूम जाता है। ऐसी जो जिह्वा है, तार मध्य जिह्वा आती लोभोमय सुदूर मति, वो मति भ्रष्ट हो गई है उसकी, वो बोलेगा चलो इधर डोसा खाना है तो पूरा शिप चला जाएगा, हमारा पूरा शरीर 80 किलो का आदमी, उसका जिह्वा है 4 इंच का, पर वो अगर घूम गया थोड़ा हे उस तरफ वड़ा पाव है लोनावाला का चिक्की है यहाँ इधर, तुरंत उठा के ले जाता, खींच के उसको ले जाता, एक थोड़ा इधर घुमा तो पूरा शरीर उसके पीछे पीछे चला जाता है। जीवा वेगम, तो ताके जेता कठिन संसार, हम लोग प्रार्थना तो करते हैं पर कभी कभी इसके बारे में सोचना भी चाहिए, ताके जेता कठिन संसार लोभो भाई सुधो, मतलब लोभी है बहुत, सोचती भी नहीं है कि क्या है, भोग लगाया कि नहीं तो बाद में सोचेंगे, पहले खा लो बाद में सोचेंगे, लोभोमय सुदूरमति ताके जेता कठिन संसार। पर कृष्ण बड़ा दयामय, कृष्ण बड़े दयामय, करीबारे जिह्वा जाए, जिह्वा को नियंत्रण करने के लिए एक फर्स्ट क्लास फॉर्मूला दिए, स्वप्रसाद अन्न दिलोभा, सही अन्नामृत पाओ राधा कृष्ण गुण गाओ प्रेमी डाको चैतन्य निराय। तो भक्ति विनोद ठाकुर इस सुंदर भजन के द्वारा हमें सिखाते हैं कि कैसे जीवा को नियंत्रण किया जा सकता है। जीवा को नियंत्रण करना, एक्चुअली ये जीवा बंधन के द्वार या मुक्ति के द्वार ले जा सकता है हमको। पद्म पुराण में वर्णन है कि कौन सा वो श्लोक है, अत श्री कृष्ण नामादि न भवे ग्राह्य इंद्रिय सेवोन्मुखे ही जिह्वादौ स्वयमेव स्फुरत्यदा। ये जिह्वा जो है हमारे बंधन का कारण है, हमारे मुक्ति का कारण है। ये जिह्वा से दो काम होता है, एक चीज अंदर जाता है, एक चीज बाहर आता है। सब खाना अंदर जिह्वा पहले टेस्ट करता है और जो भी बोलते हैं वो जिह्वा से बाहर आता है। तो अगर हम वचन ले लें कि इस जिह्वा के अंदर जो भी जाएगा वो भगवान को भोग लगाकर प्रसाद अंदर जाएगा, और जो भी बाहर आएगा वो कृष्ण के संबंधित में आएगा, नहीं तो बाहर नहीं आना, चुप। अगर ये वचन ले ले हमारा नया साल का रेजोल्यूशन, तो हमारा जीवन सफल, मुक्ति का द्वार खुल गया हमारे लिए। इतना सरल है, भक्ति बहुत सरल है, पर तकलीफ ये है कि हम सरल स्वभाव के नहीं, हम बड़े टेढ़े हैं, उसमें से कुछ बायलॉ निकालते हैं, कोई शॉर्टकट निकालने का, उसमें भी भगवान ने ऑलरेडी दिया चैतन्य महाप्रभु ने शॉर्टकट, उसमें भी शॉर्टकट निकालने का कोशिश करते हैं, वही हमारी समस्या है, हम सरल नहीं। तो अगर जिह्वा को हमने नियंत्रण कर दिया, 6 प्रकार के रस होते हैं, कटु तिक्त इत्यादि आंवला इत्यादि, बोले एक रस में भी थोड़ा आसक्ति हो गई और उसके रस के बिना नहीं तो फिर मुश्किल हो जाएगा। एक पेशेंट को मैंने देखा है, वो ऑलमोस्ट मरने की स्थिति में आ गया, तो उसके रिश्तेदार ने पूछा, पिताजी थे उनके, बोले क्या चाहिए आपको, अंतिम इच्छा क्या है आपको, उसको बात भी करने नहीं आ रहा था, वहां छेद कर दिए थे इधर, कुछ खाने नहीं होता था, इसीलिए खाने का खाने भी नहीं सकते थे, तो इधर छेद करके यहाँ से एक पाइप लगाए थे और उसमें फनल लगाया था, उसमें से जूस डालते थे नारियल का पानी, इसमें से मतलब जीवा को कई महीनों तक उन्होंने कुछ खाया नहीं, यहाँ से जाता था, तो ऑलमोस्ट मरने की स्थिति में आ गए। तो उनसे पूछा, आपकी अंतिम इच्छा क्या है? आसान दोसा। बोले मसाला दोसा चाहिए मेरे। कई महीनों से कुछ नहीं लगा इस जीवा को, अंतिम इच्छा, जीवन की अंतिम इच्छा, अंतकाले यम यम माति स्मरण मावम त्यजत्यन्ते कलेवरम, अगले जन्म में जरूर होटल में पैदा होगा। जिंदगी भर मसाला डोसा बनाते रहे, मतलब जीवा का वेग कितना, मुझे वही टेस्ट चाहिए। हमारे एक भक्त हैं जो स्टॉक एक्सचेंज में काम करते हैं बंबई में, वो बोलते हैं नीचे एक व्यक्ति है, उसको एक खास दुकान का एक खास प्रकार का चाय एक खास टेम्परेचर में ही चाहिए उसको, उसके बिना उसका दिन शुरू नहीं होता, उसका कुछ मशीन काम ही नहीं करता उसका, जब तक वो खास दुकान से वो खास व्यक्ति से वो खास ब्रांड का चाय वो खास टेम्परेचर, वो टेम्परेचर भी उसको मालूम है, वो फ्लास्क में डाल के देता है उसको। हमारे मंदिर के सामने एक बाबुलनाथ पान वाला है, लोखंड वाला से एक आदमी आते हो सिर्फ वहां का पान खाने के लिए, उनका जीवा वहां से ही खिंचा लाता है। अरे वो लोखंड अंधेरे में कितना पान का दुकान है, पर ये खास एक ब्रांड इसने जो बनाया, आदत पड़ गया उसको, इतना कंडीशन हो गया है कि उसको खाने के लिए वो लोखंड वाला से आता है, चार दिन का स्टॉक एक साथ ले जाता है। ऐसी खतरनाक है जीवा, ताकि जीता कठिन संसारे। भक्तिविनोद ठाकुर के इस भजन को हम समझते नहीं है, हर रोज हम लोग को तो ध्यान ही नहीं रहता, प्रसाद के प्लेट के ऊपर ध्यान रहता है, चरिता विद्या जड़ेन्द्रियता है का। पर एक्चुअली आप सोचेंगे ये 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 जो प्रार्थना है इसको भावनापूर्वक आप करेंगे, शरीर अविद्या जाल, ये विद्या का क्या बोल रहे हैं हम लोग भूल जाते हैं कभी कभी, अरे सुनेंगे तो रोंगटे खड़े हो जाएंगे, ये प्रार्थना ऐसा है, दूसरी बार बोलेंगे नहीं ये प्रार्थना डर के मारे। शरीर अविद्या जाल जड़ेन्द्रिय ताहे काल, मृत्यु की ओर जा रहा है, और उसमें भी जीवे फैले विषय सागरे, जीव को उठा के फेंक दिया हमको विषय सागर में, कोई डूब रहा है सागर में प्रसाद के बारे में सोचेगा? जीवे फैले विषय सागरे, और उसमें भी तार मध्य जीवा आती लोभोमय सुदूरमती, क्या परिस्थिति है हमारी, बोल रहे हैं पर ध्यान कहीं और है। बट कृष्ण बड़ा दयामय, कृष्ण बहुत दयामय, करीब आ रहे जीवा जाए, चलो चलो खाओ खाओ प्रसाद खाओ। तो अलग अलग प्रकार के मांस हो या मछली हो या अंडे हो या पान हो, हरिता की हो, पान मसाला हो, कॉफी हो, चाय हो, अरे भक्तिविनोद ठाकुर सब लिखते हैं, मतलब 200 साल पहले भी यही प्रॉब्लम था। खास करके चाय, मतलब बंगाल बंगाल में चाय का तो बहुत है, मछली का बहुत है। एक हमारे एक भक्त बनने की कोशिश कर रहे हैं, आते हैं हमारे मंदिर में, बेचारे सब कुछ छोड़ दिए, बोले मछली नहीं छोड़ सकता, बंगाली है वो, बोले मछली नहीं छोड़ सकता मैं, जिसने भी मछली छोड़ देता हूं तो पेट बड़ा हो जाता है मेरा, गैस भर जाता है। तो मैं बोला गैस निकालने के लिए मेरे को आयुर्वेदिक दवा दूंगा, बोले नहीं 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 ये छोड़ नहीं सकता, बहुत मुश्किल है उनको, कभी कभी सब छूट जाता है, एक रह जाता है, हाथी अंदर घुस गया पूछ अटक गया, हो जाता है। वो ब्रांड का थोड़ा चाहिए, वो तो भी इतनी चाहिए बस, बहुत मुश्किल है, ताकि जीता कठिन है संसार। अच्छा हम कहेंगे कि नहीं भाई हम तो अभी प्योर वेजिटेरियन है, पर वेजिटेरियन हो या नॉन वेजिटेरियन हो, वेजिटेरियन भी आसक्ति हो सकता है, हमको वही चीज चाहिए, प्रसाद में भी वही महाप्रसाद चाहिए जो सिर्फ मीठा हो और दूध का बनाया गया हो, वो भी एक प्रकार का आसक्ति है। भावना खाई वे यार भावना परिवे, चैतन्य महाप्रभु ने कहा, ऑफ कोर्स वो तो सन्यासियों को कहा है, गृहस्थों के लिए थोड़ा छूट है। पर सात्विक, भले सात्विक अन्न भी हो, पर जरूरत से ज्यादा वो भी एक प्रकार की आसक्ति है। और अगर भाई कई बहुत धनी आदमी के यहां अगर आमंत्रण मिला तो बड़े खुशी से जाते हैं. क्यों जाते हैं? क्योंकि अच्छा खाना मिले, घी में बनाना मिले, मिनिमम पनीर का ही बनता है सब कुछ वहां. अगर ये इच्छा से जा रहे हैं वो भी जीवा की लालसा है, भले प्रसाद मिलता हो वहां, पर फिर भी अगर इसी कारण हम लोग वहां जा रहे हैं तो इसका मतलब वो भी एक प्रकार की आसक्ति है. ऑफकोर्स बहुत सारा है पर समय कम है, ज्यादा नहीं जाऊंगा. पर समझ लीजिए, ताके जेता कठिना संसार है, सार में यही है. पर अगर कम से कम एक वचन ले लेते हम लोग जीवन में कि मैं जो भी खाऊंगा कम से कम कृष्ण प्रसाद को ग्रहण करूंगा, अगर आप एक भी वचन ये ले लें तो धीरे धीरे आपका जीवन मंगलमय हो जाएगा 100%. ये मैंने देखा है, सिर्फ अगर ये ले लेंगे, कुछ भी जाएगा मुंह के अंदर जाएगा तो कृष्ण का प्रसाद होना चाहिए. बस अगर ये एक भी अगर ले लेंगे तो ये शक्तिशाली जिह्वा जिसको नियंत्रण करना बड़ा मुश्किल है, नियंत्रण अपने आप हो जाएगा. उदर वेगम, अरे जीवा का होता, पर कभी कभी खाने का बहुत दिल होता है और भर पेट खा लेते हैं और बाद में पछताते, अरे मेरे को लगा था वो दूसरा गुलाब जामुन उसने डाला, मैं ना बोला पर फिर भी डाल दिया और फिर ना नहीं बोल पाया तीसरी बार. बाद में अगले दिन सुबह जब उठने नहीं होता है, माला नहीं हो पाता है, तब बुरा लगता है. छह या कुछ उल्टा सीधा हो गया, पेट का गड़बड़ी हो गया, तब तब समझ में आता मेरे को लगा था उस समय थोड़ा एक्स्ट्रा था वो. तो उदर वेगम, इसको कैसे दूर करें? एक ही तरीका है, एकादशी का पालन करने से. भले जैसा हो, भले सिंपल से सिंपल करो, कम से कम उस दिन फलाहार करो. उप उपवास, उप मतलब पास में और वास मतलब निवास करना, मतलब उपवास मतलब भगवान के पास निवास करना. यानी उस दिन भगवान की भक्ति का कार्य ज्यादा होना चाहिए और शरीर और पेट का काम, जीवा और पेट का काम कम होना चाहिए. जैसा मशीन को भी हम लोग एक दिन छुट्टी देते ना, साफ आफ करते हैं उसको, ये मशीन भी उसको साफ करने दो एक बार. और मैंने देखा है, ये प्रैक्टिकल अनुभव है, जो भी एकादशी का अच्छी तरह से पालन करता है वेरी रेयरली बीमार पड़ता है. वो बीमार नहीं पड़ते आदमी लोग, ऐसे लोग लंगड़म परमोषणम आयुर्वेद में भी कहा गया है. अब पशुओं को देखिए, जब वो बीमार रहते हैं कुछ खाते नहीं, भले कुछ भी सामने डाल दो नहीं खाएंगे वो. पर मनुष्य ऐसा जीव है, उसमें भी सोचता है, उसने कुछ तो मिक्स करके दवाई को मिक्स करके खा लेंगे, पर खाएंगे जरूर. बड़ा विचित्र जीव है ये मनुष्य. बुद्धि ज्यादा है ना, बुद्धि ज्यादा है. कुत्ते बिल्ली ऐसा नहीं, जिस दिन बीमार है उसको तुरंत पता लग जाएगा, खाएंगे नहीं वो. कुछ भी डाल दो, एकदम अच्छे लगने वाले चीज भी डाल दो, भगवान ने उनको ऐसा बनाया उनका सॉफ्टवेयर, अपने आप समझ में आता है, नहीं फाइल खुलता ही नहीं है उनका. पर हमारा हमेशा पासवर्ड लग जाता है, पूरा फाइल खुल जाता है, चलो ले लो अंदर, उसमें हमको मालूम है कैसा उसको घुमा फिरा के लेना है. तो उपवास एकादशी का पालन करने से, जिस जितना हो सके, इतना भी कठोरता से नहीं करना चाहिए कि सिर्फ खाने का सोचते रहे अगले दिन. भले एक बार खाओ, फलाहार करो, भले थोड़ा पानी पी लो चलेगा, पर भगवान की भक्ति ज्यादा होना चाहिए उस दिन. भक्ति का काम, आत्मा का काम ज्यादा, शरीर का काम कम, इसका मतलब, इसके लिए उपवास करते हैं. तो दूसरा काम तो तकलीफ नहीं रहेगा, पानी खाना कुछ नहीं है तो 15 दिन में एक बार, ज्यादा नहीं. और इत्यादि, जन्माष्टमी और एकादशी, एकादशी का जो पालन करता है, मैंने देखा मेरे जीवन में, कम से कम अनुभव मैंने किया है कि पहले बहुत सारी समस्या, छोटे मोटे पेट का प्रॉब्लम, गले का प्रॉब्लम, खांसी, बहुत कम हो गया जब से उपवास करने लगे, एकादशी का व्रत पालन करने लगे. पर सिर्फ उसके लिए नहीं, सिर्फ स्वास्थ्य अच्छा रहने इसके लिए नहीं, आध्यात्मिक जीवन में बहुत बड़े बड़ी मात्रा में प्रगति कर सकते, कैटलिस्ट. जैसे केमिस्ट्री में होता है, अगर एक एक रिएक्शन को 10 मिनट लगे, उसको आप कुछ डाल देंगे तो 2 मिनट में हो जाता है, उसको बोलते हैं कैटलिस्ट. एकादशी ऐसा है. शुद्ध भगत चरण रेणु भजन अनुकूला, माधव तिथि भक्ति जननी, यतने पालन करी, भक्ति विनोद ठाकुर कहते हैं। माधव तिथि, माधव तिथि मतलब एकादशी, भक्ति जननी, भक्ति की जननी है, जननी मतलब जन्म देने वाली है वो, मां जो है बच्चे को जन्म देती है, तो एकादशी जो है भक्ति को जन्म देगी आपके हृदय में। माधव तिथि भक्ति जननी, यतने पालन कोरी, कोशिश करना चाहिए जितना हो सके उतना पालन करो कम से कम। तो उदर वेगम, फिर उपस्थ वेगम, उपस्थ वेगम मतलब जननियों, जननेन्द्रियों का नियंत्रण। ये कैसा होता है, जब हम विवाह का उद्देश्य है कि ऐसे बच्चों को उत्पन्न करना जो जिनको हम कृष्ण भावना में बढ़ा सके, ये हमारी सेवा है भगवान के लिए, सेवा है गृहस्थों का कि हम ऐसे बच्चे पैदा करें जो भगवान की भक्ति में हम उनको लगा सके। एक बद्ध जीव को गुरु न सस्या, पिता न सस्या, जननी न सस्या, नमो चाहिए तत् समुपेत मृत्यु, माता पिता बनना है तो ये जिम्मेदारी है कि हमारे बच्चों को, ये जिम्मेदारी है कि हमारी कोशिश पूरी होनी चाहिए कि उसको अच्छा भक्त बनाए, पुत्र, सही पुत्र बनाए या पुत्री बनाए। और बिना कंट्रोल के, बिना नियंत्रण के मैथुन, ये भी एक प्रकार का उपस्थ वेग है। और कृत्रिम रूप से ये मैथुन इच्छा को तृप्त करने की कोशिश करना, वो भी एक प्रकार का उपस्थ वेग है। और सिर्फ उसके बारे में सोचना या योजना बनाना और उसके बारे में बातचीत करना, भले हम नहीं करें पर सिर्फ सोचना उसके बारे में, हमेशा सोचते रहना, उसके लिए योजना बनाना कि ऐसा करूंगा ऐसा करूंगा, काल्पनिक रूप से, या उसके बारे में बातचीत करना, ये भी सूक्ष्म प्रकार का मैथुन और उसे बढ़ता है। तो इस तरह से ये छह प्रकार के वेग हैं। और ये जब व्यक्ति नियंत्रण करता है तब वो भक्ति में आसानी से प्रगति कर सकता है। तो निष्कर्ष में प्रभुपाद जी समझाते हैं कि अपने आप में वाचो वेगम, मनस वेगम, जीवा वेगम, उदर उपस्थ वेगम, इसको वेग को अगर नियंत्रण करे तो ये भक्ति नहीं है, ये अपने आप में भक्ति नहीं है। तो आप बोलेंगे अभी चर्चा क्या कर रहे थे फिर इतना, अपने आप में ये भक्ति नहीं है, क्योंकि भक्ति का मतलब है श्रवणम कीर्तनम। नवदा भक्ति जो है उसमें ऐसा नहीं है, भगवान प्रहलाद महाराज ने ये नहीं कहा श्रवणम कीर्तनम विष्णु वाचो वेगम मनस वेगम, वो तो नहीं बोले उन्होंने, कहा श्रवणम कीर्तनम विष्णु पाद सेवनम अर्चनम वंदनम दासम सिख्यम आत्म निवेदनम। भक्ति का तो लक्षण वो है श्रवणम कीर्तनम, नवदा भक्ति, पर ये जो है सेकेंडरी कैरेक्टरिस्टिक्स, ये दूसरे स्तर पर आता है। और इन सब का उद्देश्य है मन और इंद्रियों को रजो और तमोगुण में जाने से नियंत्रण करो, बस ये उसका सार है। ये सब चीजों को नियंत्रण करने का मतलब है रजो और तमोगुण से मन और इंद्रियों को नियंत्रण करो, क्योंकि त्रिविधम नरकस्येदम द्वारम, नरक को ले जाएंगे आपको, ये पाप करने में प्रवृत्त कराएंगे और नरक में ले जाएंगे। तो अगर ये वेगों को छोड़ देंगे, क्योंकि मायावादी लोग भी वाचो वेगम नहीं करते, वो तो मौन व्रत रखते हैं, मनस वेगम वो शून्य में हमेशा नहीं करते रहते हैं, जिह्वा वेगम वो भी कुछ खाते ही नहीं, बहुत तीन दिन में एक बार खाया, जिह्वा वेगम उदर वेगम उपस्थ वेगम, वो तो ब्रह्मचारी रहते हैं हमेशा संन्यासी रहते हैं, तो वो भी ये सब इनका, हम भक्तों से शायद भले ज्यादा पालन करते हो, अरे स्पोर्ट्समैन लोग भी एक पालन करते हैं इसका। नादिया बोल के एक जिम्नास्ट थी, उसने जिंदगी भर उसको अच्छा लगने वाले चीज नहीं खाए, क्यों, क्योंकि छोटे उम्र से उसको पता चला कि जिम्नास्ट में मेरे को गोल्ड मेडल मिलना है, तो ऐसा डाइट खाती थी जो योगी लोग भी नहीं खाते, उतना ही कम खाती थी वो। जो लता मंगेशकर को एक बार पूछा गया कि आपके जीवन का अंतिम इच्छा क्या है, बोले मेरे को आइसक्रीम खाना है, क्योंकि खाने नहीं होता है, खाने से मेरा गला खराब हो जाएगा, मेरा प्रोग्राम नहीं जा सकती। तो बाहर रूप से नियंत्रण कर रहे हैं पर इच्छा नहीं जाएगी, पर इच्छा तब जाएगी जब श्रवणम कीर्तनम करेंगे। तो मित भूख, 26 लक्षण है वैष्णवों का, उसमें से एक है मित भूख। मित भूख मतलब कम खाने वाला, जितना जरूरी उतना, युक्त आहार विहारस्य, जितना जरूरी उतना खाना। पर जितना जरूरी उतना खाना बहुत बड़े काम नहीं है, वो तो बड़े बड़े डॉक्टर लोग भी कम खाते हैं, स्टूडेंट लोग भी कम खाते बेचारे जबरदस्ती, क्योंकि टाइम नहीं मिलता, कुछ खाने को मिलता भी नहीं ठीक से उनको, तो हमसे ज्यादा भले वो तपस्या करते हो। पर कृष्ण ही का शरण, ये 26 लक्षण में पहला लक्षण है कृष्ण ही का शरण। अगर ये कृष्ण की शरण में नहीं जा रहे हैं, ये सब नियंत्रण करके जो अपने इंद्रियों को कृष्ण के चरणों में नहीं लगा रहे हैं, कृष्ण की सेवा में नहीं लगा रहे हैं, तो ये सब इंद्रियों को वचन छह वेगों को नियंत्रण करके कोई फायदा नहीं, भक्ति में प्रगति नहीं करेंगे हम लोग। दूसरी बात ये है, हाँ ये जो या गोस्वामी बनने का तरीका कि क्यों हम लोग ये सब नियंत्रण कर रहे हैं, इंद्रियों को नियंत्रण करने का मतलब है जब भक्ति के लिए अनुकूल हो तो अपने आंख कान सब कुछ हम लोग यूज करेंगे भक्ति में, और जब भक्ति के लिए प्रतिकूल वातावरण हो तो एक कछुए के समान अंदर ले लेंगे। कूर्मोंगा नहीं व सर्वशा, आप देखिए पुराने मंदिरों में जाएंगे तो भगवान के दर्शन के सामने जमीन पे एक कछुआ बनाया है, सर बाहर इंद्रियां बाहर ऐसा बैठा हुआ है कछुआ, जमीन के ऊपर रहता है कछुआ। क्यों है, इसका महत्व क्या है? यहां अपने इंद्रियों को बाहर खोलो, ये खोलने का जगह है। आंखों से भगवान का दर्शन करो, कानों से भगवान के बारे में सुनो, जीवा से भगवान के को भोग लगाए प्रसाद या तुलसी का आस्वादन करो, नाक से भगवान को लगाए पुष्प का निर्माल्य का सुगंध लो, हाथों से प्रणाम करो, चरणों से और पास आओ, सर झुकाओ, मुंह से गुणगान करो, यहां अपने इंद्रियों का उपयोग करो। और जब आप बाहर जाओगे तो इंद्रियों को अंदर, जितना है जितना जरूरी काम हो गया चलो वापस, स्टिक टू द बिजनेस, काम हो गया चलो, उस समय इंद्रियों को, ये योगी है, भक्ति का मतलब ये, उस समय इधर उधर आंख खोलने की जरूरत नहीं, हो गया काम ना इधर, योगी है भगवान के सामने, दूसरी जगह अंदर ले लो, इसको कहते हैं गोस्वामी। भगवान की सेवा के लिए अपने इंद्रियों को उपयोग करेगा पर दूसरे के लिए नहीं। और अंत में ये तभी होगा, ये जीवन भर अगर तभी हम कर पाएंगे जब भगवान कहते हैं भगवद गीता में, हे अर्जुन ये कूर्मोंगानी बन, ये सब करते हैं दूसरे अध्याय के अंत में, पर अंत में कहते हैं कि ये तब होगा, विषया विनिवर्तन्ते निराहारस्य देहिनः रसवर्जम रसोप्यस्य परम दृष्ट्वा निवर्तते। ये तभी होगा जब एक ऊंचे रस का आस्वादन मिलेगा आपको, जब ऊंचे रस का आस्वादन नहीं मिलेगा तो क्या होगा, विश्वामित्र जैसे 60,000 साल तक सबको पकड़ के ऐसे बैठे रहोगे, पर एक थोड़ी मेनका आ गई और एक उसका थोड़ा पायल का आवाज आ गया, पांचवी इंद्रिया बाहर आ जाएंगे, खत्म। या शौबरी मुनि जैसा गंगा यमुना के अंदर जाके बैठे हुए, कोई डिस्टर्ब नहीं हो, पानी के अंदर कौन आएगा डिस्टर्ब करने के लिए, तो वहां तो मछली के अलावा, पर मछली काफी थी उनके लिए, दो मछली को देखे और मन ने बाकी जो था सब कनेक्शन जोड़ दिया, उठ के आए सीधा, कहां है ऐसा कुछ। और वही हरिदास ठाकुर अलोन जंगल में बैठे हुए थे अकेले, और अनुकूल वातावरण, फर्स्ट क्लास वातावरण, बहुत ही अच्छा जंगल और सूर्य अस्त हो रहा था, अच्छा माहौल था, और उसमें वेश्या आई, बाद में माया देवी खुद आई शांतिपुर के पास, पर हरिदास ठाकुर उसमें फंसे नहीं, उसे आकर्षित नहीं हुए। क्यों? क्योंकि परम दृष्ट्वा निवर्तते, क्योंकि उनका मन कृष्ण सूर्य समा माया है अंधकार, क्योंकि कृष्ण में मग्न था। तो जब तक एक हायर टेस्ट नहीं होगा तो थोड़े दिन तक कर पाएंगे, पर बाद में ये चला जाएगा, ये नहीं कर पाएंगे हम लोग। और आजकल तो कलयुग में बहुत ही मुश्किल है, क्योंकि इस प्रकार से भौतिक चीजों में प्रगति हुई है कि इतने आकर्षित है, सारी इंद्रियों को भड़काने के लिए हजारों चीजें आजकल। तो अंदर से जब तक नामे रुचि, कृष्ण कथामृत, कृष्ण नामामृत, चरणामृत और कृष्ण प्रसाद, इसमें जब थोड़ा रस नहीं है, एक ऊंचे रस का आस्वादन नहीं है, तो ज्यादा दिन हम लोग नहीं कर पाएंगे। तो साथ साथ में हमको एक ऊंचे रस का आस्वादन को, ये सब क्यों कर रहे हैं, ताकि टाइम मिले जिसको हम भगवान की सेवा में लगा सके, जिससे ऊंचा एक रस का आस्वादन हो। एक जब ऊंचा रस का आस्वादन हो गया तो नीचा रस अपने आप चला जाएगा, और तब तक ये स्थिति हमारी बहुत मुश्किल है। क्रिश्चियन भाषा में, क्रिश्चियन इसमें धर्म में उसको कहते हैं डार्क नाइट ऑफ द सोल। हमारी अभी परिस्थिति क्या है, हम सब की, हम सब भक्त हैं, हम सब लोग साधक हैं, हमारी परिस्थिति क्या है, रात को 12 बजे जैसा परिस्थिति हमारी परिस्थिति है। रात को 12 बजे का मतलब, रात को 12 बजे क्या होता है, सूरज अभी डूब गया है, 6 बजे सूरज डूब गया और 6 बजे सुबह सूरज उगेगा, और अभी अंधकार ही अंधकार है। साधकों की स्थिति हमारी ऐसी है, हमने बुद्धि से जान लिया कि इंद्र तृप्ति में आनंद नहीं है, इंद्र तृप्ति का सूरज डूब गया हमारे जीवन में। पर हमने सुना है कि बड़े बड़े महान भक्त कृष्ण के सूरज, श्रीमद् भागवत जैसा सूरज, उसका आस्वादन कर रहे हैं, और हमारे जीवन में उसका आस्वादन, वो सूरज उगा नहीं अभी तक। तो हमारी परिस्थिति बहुत बुरी है, अंधकार ही अंधकार है। जहां आस्वादन था, इंद्रियां कहती है विषय भोग करो, जिसका अनुभव हुआ है हमें, पर बुद्धि कहता है सूरज डूब गया, अभी उसमें कुछ नहीं है, पर बुद्धि कहता है कि इसमें आस्वादन है, रस है। कृष्ण नाम नाम कार्य बहुधा निज सर्वशक्ति नाम चिंतामणि कृष्ण चैतन्य रस विग्रह, पर इंद्रियों को इसमें रस अभी तक आया नहीं है। जिसमें इंद्रियों का रस है वहां सूरज डूब गया, और जिसमें इंद्रियों का रस नहीं है उसका सूरज उगा ही नहीं अभी तक। तो न घर के न घाट के, इस समय क्या करेंगे, कभी कभी निरुत्साह हो जाता है आदमी। इसीलिए अगले श्लोकों में बताया गया है उत्साह निश्चया धैर्य, निश्चय रखो, उत्साह पूर्वक चलो, धीरज रखो, चिंता मत करो। तुम गोस्वामी बनने की कोशिश कर रहे हो, विषय भोग इंद्र तृप्ति का सूरज डूब गया है, और कृष्ण कथामृत, कृष्ण भावनामृत और भागवतामृत, इसका आस्वादन अभी नहीं मिला है, तो हम कहीं के नहीं रहे। तो हमारी परिस्थिति ऐसा है। तो आदव श्रद्धा तथा साधु संग तथा भजन क्रिया, अभी भजन क्रिया है पर अनर्थ निवृत्ति शंका आ रही है, कहीं कुछ नहीं मिला तो, इधर भी नहीं मिला और उधर भी नहीं मिला, अब बीच में मर गए, घर का ना घाट का, अच्छा से कम वो तो किया होता कम से कम। तो इस समय साधु संग, आदव श्रद्धा, थोड़ी बहुत श्रद्धा है तथा साधु संग तथा भजन क्रिया, फिर अनर्थ निवृत्ति स्या तथा निष्ठा रुचि तथा, फिर रुचि आएगी, थोड़ा समय चाहिए। उत्साह निश्चयात धैर्यात तत्त कर्म प्रवर्तना संग त्यागात सतो वृत्ते, महाजनों के पद चिन्हों में चलेंगे, षड्भिर भक्ति प्रसिद्ध्यति, और फिर आस्वादन करेंगे। तो अगले बार हम चर्चा करेंगे दूसरा श्लोक, 6 चीज जो भक्ति के लिए प्रतिकूल है और 6 चीज जो भक्ति के लिए अनुकूल है। क्षय वेग दमी अभी हमने चर्चा किया, पर अगले बार करेंगे क्षय दोष शोधी क्षय गुण देहो दासे, और अंत में क्षय सतसंग, इस प्रकार से भक्तों का संग हमको करना चाहिए। श्रील प्रभुपाद की जय, ग्रंथराज श्रीमद श्री उपदेशामृत की जय, श्रील रूप गोस्वामी, इसको कहते हैं रिचुअलिस्टिक चैंटिंग, बिना सोचे, श्रील रूप गोस्वामी पाद की जय, श्रील प्रभुपाद की जय, अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय, निताय गौर प्रेमानंद की जय। यू वांट टू मेक दैट अनाउंसमेंट?
कार्यक्रमानंतर जो प्रसंग आहे जो त्या स्वरूपात करता आहे